الصلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، وهو رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وعليه وإكرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ليعلم الله من ينصره بغيب ورسله إن الله قوي عزيز. ایک آئے حدیث کہ 124,000 انبیاء اور 12 اماموں کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو بھی بیان کر رہی ہے، اور یہ بھی تفصیل جو نظام بھی دنیا میں لے کے آتے ہیں اس کے لیے کیا چیزیں لازم اور ضروری. اور چونکہ تمام معصوم حجتوں کا جو مقصد اس آیت میں آیا، اس آیت اس کا براہ راست تعلق ہم سب کی ذمہ داری سے بنتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے ہم پر بھی ایک رسپانسبلٹی آ جاتی ہے یا ہماری بھی ایک ڈیوٹی بن جاتی ہے. تو جو چیزیں انبیاء لے کے آ رہے ہیں وہ ہم اور آپ لازم اور واجب پائی کہ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، لیکن پہلے آیت کا براہ راست ترجمہ بغیر کسی تشریح کے، تاکہ کل جو ترجمہ ٹکڑے ٹکڑوں میں ہوا تو قرآن کی آیت کا پیغام شاید واضح نہیں ہوا. ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم رسولوں کو بھیجا. پہلی چیز نشانیوں کے ساتھ، یعنی اتنی مستحکم دلیلوں کے ساتھ، بینات. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور پھر اس کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان، بیلنس، ترازو. یہ تین تو بنیادی چیزیں ہیں جو تمام کے بھیجی گئیں. یہ صرف حق کے راستے پہ نہیں، یہ تین چیزیں ہیں: بینات، دلیل، کتاب، عدل. کہا لیکن ان تینوں کا ملا کے مقصد ایک ہو، اومن ناسو، ناسا نہیں ہے، ناسو. ابھی انگریزی کا ناسا ناسو نہ ہو جائے، لے یقومن ناسو. شاید کچھ پرابلم ہو رہا ہے آواز میں، درود بھیجے محمد والے محمد. يقوم الناس تاکہ انسان خود قائم کر سکیں اسٹیبلش کر سکیں بالقسط نظام عدل. ایک لفظ اگر یہ ناسا ہوتا تو اس کا ترجمہ اب یہ بہت تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, خشک ہو جائے گی بات, موضوع سے ہٹ جاؤں گا. اس کا ترجمہ یہ ہوتا کہ انبیاء اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں پر عدل کا اور جسٹس کا نظام نافذ کرے. کہا نہیں, لوگوں کو وہ عدل ڈلوائی جائے, لوگوں کی وہ تربیت کی جائے, لوگوں کو ایسا چینج کیا جائے, لوگوں کو ایسا بنایا جائے کہ ہر آدمی خود اپنی جگہ عدل کے راستے پہ چلے. اور پھر آخر میں قرآن نے یہ بات بتائی ہے کہ ہر معاشرے کتنا ہی آپ اس کو بہتر سے بہتر بنا دیں کہ شریر لوگ ہوتے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کتنے ہی آپ ان کی اصلاح کر دیں لیکن بہرحال یہ حدیث ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں, بلکہ معصومین اس قول کا مذاق اڑائے جسے بہت سارے لوگ حدیث سمجھ رہے تھے. عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو وہ پیڑھی کی پیڑھی رہے گی, سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ تو جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی. اب یہ حدیث صحیح نہیں, لیکن کچھ افراد آن ایسے ہوتے. کل میں نے ایک سلینگ محاورہ استعمال کیا تھا جو آج استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں. پھر قرآن نے کہا دیکھیے گیپ ڈال کے وانزل نہ ڈالی, اور پھر ہم نے لوہا بھی نازل کیا کہ یہ باسو شدید جس میں طاقت آخر میں جا کے دلیل کتاب یعنی علم اور عدل, یہ تین چیزیں انبیاء کے پاس اہم ترین ٹولز ہیں, اوزار ہیں, ذرائع ہیں, وسیلے ہیں جس کے ذریعے سے نظام عدل قائم ہوتا ہے. لیکن آخر میں ایک منزل آتی ہے جہاں پہ طاقت چاہیے ہوتی ہے. یہ بأس شدید جس میں طاقت ہے, وہ منافع اور انناف اور بہت سارے فائدے بھی ہیں. دیکھیں قرآن اس کے بعد تو بات کو سمیٹا جا رہا ہے لیعلم اللہ, تاکہ اللہ کو پتا چلے کہ کون اللہ کی مدد کرتا ہے اور رسول کی بغیر دیکھے ہوئے, بغیر دیکھے ان اللہ قوی عزیز. اب یہاں ایک چھوٹی سی حدیث فی الحال جو موضوع ہے اس سے ہٹ کر, لیکن آیت میں ایک لفظ آ گیا اس کو سمجھانے کے لیے. پیغمبر اسلام یہ دعا فرماتے ہیں اور اکثر دعا فرماتے ہیں, پیغمبر اللہ کا رسول, سردار انبیاء, سردار ائمہ, پہلا معصوم, تمام معصومین کا سردار, اور وہ یہ دعا کر رہا کہ اے خدا میں اپنے بھائیوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. یہ دعا سمجھ میں نہیں آ رہی. اصحاب رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھی, آپ کے ساتھ بھائی کی طرح رہنے والے, شاید کسی سے چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کا عقیدہ آ گیا لیکن ادھر نہیں جا رہا. کہا کہ نہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جن سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں ان کو اپنا بھائی قرار دے رہا ہوں اور ان سے ملاقات کی تمنا رسول کر رہا ہوں. اس وقت بھی ہماری قوم کے کتنے لوگ کربلا محلہ گئے آقا حسین کی زیارت کر رہا ہوں, اور پوری تاریخ زیارت کی تڑپ رکھنے والوں اور تمنا کرنے والوں کے ذکر سے بھری, مگر خود اللہ کا رسول جن سے ملاقات کرنا چاہے اور تمنا اور تڑپ ہو. تو اصحاب رسول نے پہلے تو اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم بھی تو ہیں, اور جب پیغمبر نے کہا کہ نہیں تم اس درجے پہ نہیں ہو, تم میرے ساتھی ہو بھائی نہیں ہو, تو کہا کہ یا رسول اللہ پھر وہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ آخری زمانے کے مومن, بدترین زمانہ, خراب ترین زمانہ, گناہوں سے بھرا ہوا زمانہ, فتنے اور فساد سے بھرا ہوا زمانہ, لیکن کہا وہ مومن. پیغمبر ان سے ملاقات کرنے اور اب پیغمبر کے لیے تو یہ لفظ اچھا نہیں لگ رہا کہ ان کی زیارت کی تمنا رکھے, ان سے ملاقات کرنا چاہتے آخری زمانے کے مومن, دعا کر رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ वो आखिरी जमाने के मोमिन में ऐसी क्या खास बात है जो हम में नहीं। अगर जरा मेरा अंदाज वो होता तो इससे इतनी ज्यादा मजेदार बातें निकल सकती थी। ये जो साकित और सामित मजमा बैठा है, ये भी पता नहीं चल रहा कि ये गोश पोश के इंसान है या रोबोट मेरे सामने है, ये हालत ना होती मजमे की। लेकिन ये कि यार सुनेला हम भी तो है ना, इस जुमले में बहुत गुंजाइश है, हम भी तो हैं। पैगंबर ने कहा नहीं, तुम्हारा वो दर्जा और रुतबा हो ही नहीं सकता जो आखिरी जमाने के मोमिन का। अल्लाह अल्लाह, गुनाहों के दौर में रहने वाला, फितने और फसाद के दौर में रहने वाला, और पैगंबर कहें कि उनका जो दर्जा, तो अब असहाबे रसूल सवाल करते हैं कि हम में और उनमें फर्क क्या है, हम उनसे बेहतर का फर्क ये कि तुम मुझे देखकर मुझ पर ईमान लाए और मेरी बातें मान रहे, वो भी जो मान रहे थे, और वो जो आखिरी जमाने के हैं, इन्होंने मुझे देखा नहीं होगा। ये शायद अंग्रेजी में ये ट्रांसलेशन में अनसीन, बगैर मुझे देखे हुए मुझ पर ईमान भी लाएंगे, मुझसे मोहब्बत भी करेंगे और मेरी बातें भी मानेंगे। उनका दर्जा बुलंद। सूरह हदीद पैगंबर की जिंदगी में नाजिल हुआ, जो कुरान तो कहते ही उसे जो रसूल पे नाजिल, लियालमल्लाह मन यंसुरहु बिगैबिन। अल्लाह ये देखना चाहता है कि बगैर देखे हुए कौन ऐसा है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद करे। लेकिन मदद किस हवाले से, आयत जहाज से शुरू हुई, माशरे में तुम्हें निजाम अदल कायम करना, जस्टिस। और यहीं पर मैंने पहली मजलिस में जो जुमला कहा था, पहली मजलिस में जुमला नहीं था, खासी लंबी बात हो गई थी, लेकिन उसका खुलासा कि जमाने के इमाम का जो जिहाद बताया गया है वो यही ना, ये जुल्म का खात्मा करना, कुफर और शिरक और निफाक नहीं है असल चीज, जुल्म। हर जुमे में दुनिया भर में साहिबान ईमान की जुमा मसाजिद या हदीस खुतबे में पढ़ी जाती कि जम लाउल अर्ज किस्तम वादरा कमाम अफ्रिया जुल्म वजौरा। अब ये एक ही जुमला, ज्यादा तशरीह नहीं, लेकिन इस इमाम जमाना के जिहाद के साथ मौला का वो जुमला सुन ले जो इतना मशहूर है, इतना मशहूर है ये आजकल के हालात में, दुनिया मजबूर हो गई उसको मशहूर करने पे, क्योंकि वो सारी दुनिया का प्रॉब्लम बन रहा। मौला का मशहूर जुमला कि मुल्क और इख्तदार और हुकूमत कुफर के साथ बाकी रह सकती है, जुल्म के साथ बाकी नहीं रह सकती। मौला का जुमला इस वक्त हर जगह कोट किया जाता। अब 1,24,000 अंबिया इसलिए नहीं आए, नऊज़ुबिल्लाह, ये तौहीन का जुमला नहीं, इसलिए नहीं आए कि माशरे में अदल का निजाम कायम करे, इसलिए आए कि हमें और आपको अदल का निजाम कायम करने का की तरबियत दें, हम और आप ये निजाम कायम करेंगे। और किस तरह कायम करेंगे, हर आदमी पहले अपनी जात से बात शुरू करेगा, फिर अपनी इमीडिएट फैमिली आती है, फिर अपने दोस्त अहबाब आते हैं, फिर अपनी कम्युनिटी और माशरा आता है, फिर जाते हैं हम इमाम जमाना तक। एक सिलसिला है इस्लाम में, एक सीक्वेंस, एक तरतीब की इस्लाम में बहुत अहमियत है। बगैर तरतीब के अगर आप 2 रकत नमाज पढ़े तो वह नमाज गलत। खुदाबंदा क्यों गलत है, इसमें रुकू भी है, इसमें सिजदा भी है, इसमें तशहुद भी है, इसमें सलाम भी है, इसमें अलहम्द भी है, का सब कुछ है, तरतीब नहीं। वाजिबात नमाज में तरतीब शामिल है, एक सीक्वेंस। और तो और, अल्लाह का रसूल जब दीन को फैला रहा है, वो तो इतनी ताकत रखते हैं ना कि बटन दबाए और सारी दुनिया में या जितने इलाके में अपनी जिंदगी में दीन फैलाना था फैल गया। नहीं, पहले घर वालों से बात शुरू। ये जुमला अब जो मैं कह रहा हूं तौहीन वाला जुमला, मगर सूरह यूनुस की एक आयत का तर्जमा, तो आप पहले अपनी जात से बात शुरू की। अब ये तो नहीं कहूंगा कि अल्लाह के रसूल गुनाहों से अपने आप को अदल के रास्ते पे लगाया, मगर सूरह यूनुस की आयत का तर्जमा यही तो है कि अरे मक्के वालों, तुम मेरी मुखालिफत क्यों कर रहे हो, मैंने 40 साल अपना किरदार तुम्हारे सामने पेश किया है, इस किरदार में कोई कमी नजर आई, कोई कजी नजर आई, कोई खराबी नजर आई, कोई जुल्म नजर आया, राह हक से हटा था, तो पहले अपनी जात को कि देखो जो निजाम तुम्हें दे रहा हूं पहले अपने आप पर फिर दावत ज़िल-ए-शीरा। ये जुमला भी कितनी मजेदार मजेदार मारिफत वाली बातें आ सकती हैं। इसके बाद फिर उस पहाड़ी पे जाके खड़े हुए कि जिसके हवाले से हर एक को एक जुमला याद है कि पैगंबर ने कहा कि अगर इसके पीछे दुश्मन का लश्कर हो और मैं तुम्हें खबर दूं मेरी बात मानोगे कि नहीं, मक्के वाले। इसके बाद फिर अरब, इसके बाद फिर दुनिया। ये तरतीब है, हम तरतीब भूले हुए। कैसे भूले हुए? मौला आ जाइए, मौला जहूर कर ली, मौला आइए दुनिया में और निजाम अदल कायम कर, मौला आइए दुनिया में और बातिल का खात्मा करके हक को लेके आए। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई ना, मैं देख रहा हूं कि लोग बहुत बेचैन, तो पढ़ने वाले को कितनी गर्मी लग रही होगी, लेकिन शायद इंतजामिया के पास इसका कोई हल नहीं। चले, खुलासा यह है कि अल्लाह का रसूल एक तरतीब बता रहा है जो कुरान की आयत में भी आई, और इस्लाम का फाउंडेशन स्टोन नमाज है। किसी को यह जुमला पसंद आए के पसंद ना आए, इमाम मासूम का एक जुमला मैंने कल अर्ज किया था, एक जुमला आज अर्ज कर रहा। कल का जुमला यह था कि कोई हमारी विलायत को पा ही नहीं सकता जब तक कि वो नमाज ना पढ़े, और आज का जुमला यह है कि वो इमाम मासूम जिसने हमें एक किस्म की एक आइडेंटिटी दी, एक शिनाख्त दी, हम जाफरी कहलाए, फिक्र जाफरी के नाम से मशहूर हुए, उसका आखिरी जुमला छठे इमाम की शहादत से बिल्कुल पहले इमाम की आखिरी हदीस, और सुनने वाली भी इमाम की जौजा उम्मे हुमैदा, जो उर्दू में हमीदा लिखा जाता है और हमीदा पढ़ा जाता है। लिखा तो खैर हमीदा जाएगा लेकिन पढ़ा हुमैदा, अंग्रेजी में सही लिखा जाएगा। खैर, तो खुलासा यह है कि जिसकी राविया वो खुद है, ये आखिरी जुमला जो मैंने अपने आका और मौला का सुना वो था, ला तनालो शिफाअतुना मुस्तक़फ़न बिस्सला, जो नमाज को हकीर समझता। अब ये पहली हदीस के मुकाबले में और ज्यादा अजीब हदीस, पहली में बेनमाजी जो कल का मौजू था, और आज है कि नहीं नमाज भी पढ़ रहा है, बेनमाजी नहीं है लेकिन नमाज को हकीर समझ के पढ़ रहा है, लेकिन नमाज की कोई वैल्यू कोई अहमियत उसकी निगाह में नहीं। कपड़े कैसे हैं, वुजू कैसा है, तहारत का क्या इंतजाम है, नमाज के वाजिबात क्या हैं, नमाज के अल्फाज क्या हैं, नमाज के रुकू, ये लापरवाही की निशानी होती है ना। पढ़ तो रहे लेकिन मुस्तक़फ़न हकीर समझ के, कहा कि उसे हर एक को हमारी शफाअत मिलेगी, ऐसे लोगों को नहीं मिलेगी। अब हम और आप तो जिंदगी ही गुजार रहे हैं एक ही आरजू में, एक ही तमन्ना में, एक ही ख्याल में कि दुनिया की मुश्किलात तो खैर हम झेल जाएंगे, आखिरत के मरहले इमाम की शफाअत के जरिए से तय करेंगे। और वो इमाम दरवाजा बंद कर रहे हैं, ला तनालो शफाअत होना। और ये वो हदीस है जो बिल्कुल मैच करती है कुरान की उस आयत से, हर हदीस मैच करती है, लेकिन ये तो इतनी सिमिलर जो जिसका जिस आयत का हवाला मौला ने अपने उस खुतबे में दिया जो कल इशारा आयत, कि जहन्नम वालों से पूछा गया कि जहन्नम वालों मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, जहन्नम में कैसे आए, उन्होंने कहा नमाजी नहीं थे। और कुरान ने इसके बाद क्या कहा, दो बातें हुई ना, जन्नत वालों ने पूछा, ये जन्नती, किससे पूछा, जहन्नम वालों से, फिर जहन्नमियों का जवाब आया, जन्नतियों का सवाल जहन्नमियों का जवाब। मेरे हाथों को मत देखिएगा, हाथ तो उठ ही जाते हैं, किसी खास आदमी की जानिब इशारा नहीं है, तो जन्नत वालों का सवाल जहन्नम वालों का जवाब, फिर कुरान फैसला, फमा तनफअहुम शिफाअतु शाफीन। खड़ा आप आईफोन पे सूरह मुद्दसिर की 20वीं 22वीं आयत निकालिए, क्या आयत है कुरान, कुरान ने कहा कि ऐसे लोगों को जो बेनमाजी हैं किसी की भी शफात नसीब नहीं होगी। और इमाम ने फरमाया ला तनालो शफातुन, अब ये नमाज फाउंडेशन, लेकिन जैसा कि जो जुमला मैं कह चुका हूं और सिर्फ उसे मुकम्मल कर रहा था, ये भी जरा तरतीब के बरस हो गए। तो एक निजाम अदल का वो है जिसके लिए कायनात का जर्रा जर्रा तड़प रहा, लेकिन तरतीब के साथ जाना, पहले अपने आप पे वो निजाम अदल नाफिज करना। दाढ़ी शेव है, जुल्म कर रहा है और फिर कहते मौला आ जाए। अबू ज़र ग़फ़ारी से किसी ने पूछा था ना कि सारी जिंदगी रसूल के पास गुजारी, एक जुमले में हमें ऐसी नसीहत करो कि हमारी दुनिया और आखिरत बन जाए। और अबू ज़र ने कहा कि कभी उस पर जुल्म न करना जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। और सवाल पूछने वाले ने घबरा के कहा कि ये तो एक ऐसा जुमला कहा जिसके अव्वल और आखिर में कंट्राडिक्शन है। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि खुद एक ही जुमले के शुरू और आखिर में तजाद होता। कुंवारी बेवा समझ में नहीं आती है कि वो कुंवारी है कि बेवा है मसलन। अब ये तो बहुत छोटी सी बात मैंने कही, बल्कि बेहूदा बात कही, वापस ले लेता हूं। कहा कि तुमने नसीहत की, जुल्म ना करना जिससे मोहब्बत करते हो। जिससे मोहब्बत करते हो उस पर तो कोई जुल्म नहीं करता, उसकी वजह से दूसरों पे जुल्म किया जाता। दूसरे कौन? अल्लाह और रसूल तक पे जुल्म हो जाता। भाई आपकी ये बेटियां बेहिजाब कैसे घूम रही? तो कहें कि भाई वो नहीं मानती हैं और वो मुझे उनसे मोहब्बत है। या आपके घर में गाने बजाने का ये जवान बच्चे हैं, बेटे की मोहब्बत। बहुत सारे जुमले शायद कनाडा के कानून के एतबार से मैं गलत कह रहा हूं, क्योंकि आपका जवाब होगा क्या करें भाई, काबू में नहीं हमारे। लेकिन जहां काबू में है वहां भी इंसान की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत, अल्लाह और रसूल पे जुल्म हो जाता। लेकिन जिससे मोहब्बत की जाए उस पर खुद जुल्म? अबू ज़र जरा समझाओ। अबू ज़र ने एक लम्हे में समझाया, कहा आदमी सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करता है? अपने आप से। बाकी सब कहने की बातें हैं कि बीवी है और बच्चे हैं और दोस्त हैं और रिश्तेदार हैं, सबसे ज्यादा अपने आप से मोहब्बत करता। और हर गुना अपने आप पर जुल्म, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे, इसी का नाम जुल्म। तो निजाम अदल अपने आप पे लाओ, फिर अपनी फैमिली में लाओ। और उसी में एक बात मैं इसलिए कह दूं कि ये बात छठी मजलिस में पांचवी आधी आ गई थी, आधी रह गई थी, रह गई तो रहती चली गई। तो क्यों रह गया? अभी अब तक के आज मौका है हमारे पास, फिर अपना खानदान। और यहां रुक कर एक ऐसी बात कह रहा हूं कि आप कहेंगे कि बिल्कुल मौलाना भूल गए कि क्या बात थी, कहां चले गए। नहीं, इसी बात की वजाहत। कल रात को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब किस्म का सवालों जवाब का एक सेशन हुआ। यानी बाद लोगों ने कहा कि मौलाना आपने मजलिस पढ़ी 1 घंटा और 35 मिनट। मैंने कहा आप सेकंड भी बता देते, मुझे तो खैर पता ही नहीं चला कितने मिनट पढ़ा। और आपने क्वेश्चन आंसर का सेशन लिया मुसलसल 1 घंटा और 15 मिनट। इसमें ज्यादा हमें मजा आया, मजलिस में मजा नहीं आया। इतनी लंबी मजलिस सुनने के बाद और क्वेश्चन और आंसर में सिर्फ खुश्क बातें सुनने के बाद अब ये लोग कह रहे हैं। मगर उसमें दो बातें ऐसी थी, और माशाल्लाह इतना तो मजमा नहीं था लेकिन अच्छा खासा ये हॉल भरा हुआ था, लेकिन दो बातें ऐसी थी। पहली शिकायत यह आई कि आधे से ज्यादा लोगों ने यह कहा कि हमारे सवाल के जवाब आ ही नहीं सके 1.25 घंटे के बाद। और बाद लोगों ने यह कहा कि मौलाना बाद सवालात का जवाब बहुत अहम था, लेकिन जरा सी इतनी आप डिटेल में चले गए कि हम भूल गए कि आपने क्या कहा था। खास तौर पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और सेकेंड मॉर्गेज और फर्स्ट मॉर्गेज, वो सारी बातें दोहराना नहीं है, अर्ज यह करना कि मसलन जहां कहीं क्वेश्चन आंसर का सेशन होता हमेशा ये मसला रहता, 150 सवाल आते हैं, मुश्किल से 15 का जवाब दे पाता हूं, इसका सलूशन। और ये मैं पहली बार तो अलमेहदी में नहीं आया। हाँ ये तो कह सकता हूं कि शायद आखिरी बार आया हूं, लेकिन पहली तो नहीं आए ना, वो तो माजी है, वो तो अब खत्म नहीं होगा। और हर बार जो आता हूं तो क्वेश्चन आंसर सेशन हो, यही मसला। इसका हल वही जो मैं कह रहा था, खानदान में अदल लेकर आओ। और वो ये है कि एक सेशन साल में, या कोई खतीब आपका मेहमान बन के 10 दिन के लिए आए उससे एक सेशन करें, बिल्कुल एक तरह से फायदा उसका नहीं होगा, मुसलसल ये चीजें समझना पड़ेगी। और मुसलसल समझने का जो तरीका है वो है किताब। आयत भी वही थी कि हमने किताब नाजिल की। मुसलसल आपको देखिए, एक तो आदत हमारी कौम से खत्म हो रही है, अब किताब पढ़ने की आदत बिल्कुल नहीं रही। और वो जो शिकायत है कि अब कागज पे लिखी हुई किताब नहीं पढ़ी जाती, तो आजकल की जदीद टेक्नोलॉजी में जिसके बच्चे शौकीन हैं, यहां तो माशाल्लाह बड़े समझदार बच्चे बैठे हैं, लेकिन जितनी देर मजलिस होती है बच्चे सिर्फ आईफोन पे खेल खेलते रहते हैं या गेम्स। आपको भी पता, हमें भी पता, आपके पीछे होगा, हमारे तो सामने हर वो बच्चा और उसके हाथ का आईफोन है। तो खुलासा यह है कि इसके अंदर भी हर चीज मौजूद। पढ़ने की आदत डालें, जब तक कि आप पढ़ेंगे नहीं तो एक घंटा दो घंटा साल में 8-10 सेशन, कोई इसका फायदा नहीं। अब कल जो मसला इतनी तफसील से मुझे बयान करना पड़ा, मैं जवाब दे के आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसको लोग कहते कि मौलाना हजरात हमको टेक्निकल नॉकआउट कर देते हैं, ये कोई जवाब हो? जवाब मैं दे सकता था कि आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामेनाई दोनों की वेबसाइट पर, अरबी में भी, फारसी में भी, उर्दू में भी, अंग्रेजी में भी, और तुर्की में भी, और फ्रेंच के अंदर भी, और इस्पानवी जबान में भी, ये सारे सवालात और जवाबात मौजूद हैं, और बहुत ही सिस्टमेटिक वे। हमारा तो मसला ये है ना कि किसी ने एक सवाल यहां से पूछा, एक सवाल उस टॉपिक का पूछा। अब मसलन यही मॉर्गेज वाला मसला अगर किसी को मजीद समझना या याद करना, अ कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर मुस्लिम्स लिविंग इन द वेस्ट, मसलन मिसाल के तौर पे मैं आयतुल्लाह सिस्तानी की किताब का रेफरेंस दे रहा हूं, लेकिन रहबर आयतुल्लाह खामेनाई की वेबसाइट पे भी आपको मिलेगा मसल। वो आप या डाउनलोड करें या ऑनलाइन उसको पढ़िए, अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी है। और उसमें जाइए वर्क एंड इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में, क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 2, नॉन मुस्लिम मुल्क में मॉर्गेज लेने का क्या मसला। कल रात की बात रिपीट नहीं कर रहा, जो आपका सवाल है इन्हीं वर्डिंग के अंदर ये सवाल मौजूद, और इसके नीचे 4 लाइनों में जवाब, ऐसा कि मैंने शायद कल 20 मिनट लगाए थे, या आपको 2 मिनट के अंदर मुकम्मल जवाब मिल जाएगा। मर्जे का जवाब है, इतना मुकम्मल और इतना मुख्तसर, हर चीज समझ में आ जाएगी। या ये कि जो दूसरी किताब है करंट लीगल इश्यूज, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 बैंकिंग के अंदर लोन फ्रॉम द बैंक्स, ये हेडिंग है, 8 सवाल है, तो लास्ट जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका रिप्लाई वो यही मॉर्गेज। तो दोनों किताबें अंग्रेजी में भी है, जो आपका वो सवाल जिस पर कल 20 मिनट मुझे लगाना पड़े, और इतना अहम है कि मुझे लगाना वाजिब हो गया, लेकिन मुख्तसर मौजूद है पहले से, कुछ ज्यादा इसके अंदर परेशान होने की जरूरत। ये तो एक मिसाल मैंने दी क्योंकि बिल्कुल ताजा ताजा बात है कल रात की, लेकिन ऐसे कितने मसले पेश आएंगे जिसका सब जवाब मौजूद। किताब बहुत कीमती तोहफा है हमारे बुजुर्गों का हमारे लिए। कितनी सहमत से हमारे उलमा ने किताबें लिखी। आजकल किताब लिखना कितना आसान हो गया है, लिखने का मतलब यह है कि उसका प्रिंट कराना, उसका पब्लिश कराना। जब तक कि ये प्रेस नहीं बना था, हाथ से किताब लिखी जाती, कितनी कॉपीज हाथ से लिख सकते हैं, ये जेरोक्स वगैरह या फोटोकॉपी भी नहीं थी, स्कैनर भी नहीं थी, प्रेस नहीं था, तो ये सब तो बात की चीजें। उलमा ने किस तरह से किताबें बचाई, इसमें एक जुमला बहुत अहम आ रहा है कि जो हर शिया के जहन में कंफ्यूजन तो है, चाहे वो जबान पे लाए कि ना लाए, उसका जवाब भी आ रहा है इसके अंदर। बहुत मुख्तसर, मैं अपने मौजू से हटना नहीं चाहता हूं। किताब कितनी जहमत से हमारे उलमा ने लिखी, किताब होती ही नहीं, हर किताब की सिर्फ एक कॉपी, और हर किताब से मतलब है अइम्मा की अहादीस, उसूल अरबा मिया 400 हदीस की बुनियादी किताब, एक एक कॉपी। अब ये जो किताबें थी कैसे जलाई गई, कैसे दरिया में बहाई गई, मगर ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ہمارے علماء جو دیکھیں مرجے کی کوالٹیز یا کنڈیشن میں ایک کنڈیشن یہ ہے بالغ ہو عاقل ہو میموری اس کی بہت اسٹرانگ ہو یہ ایک شرط ہے اور یہ شرط کا کتنا بینیفٹ ماضی میں ملا جب کتابیں جلا دی گئیں جب کتابیں بہا دی گئیں جب کتابیں چھپا لی گئیں لیکن میموری اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی کہ پوری پوری کتاب پیج نمبر اور لائن نمبر کے ساتھ ذہن میں ہوتی تھی. اچھا عربوں کے یہاں ویسے ہی بہت اسٹرانگ میموری ہوتی تھی اور پھر اگر جو مرجے تک پہنچتا میں واقعات نہیں پڑھنا چاہتا ورنہ بات کہیں کی کہیں کی کہیں کی کہیں چلی جائے گی جو ابھی بھی مجھے لگ رہا کہ میرے کنٹرول سے نکل رہی ہے بات. تو اب ایک طریقہ ظالموں کا یہ بھی تھا کہ اس مرجے کوئی اٹھا کے قید کر دو تاکہ جو اس کے سینے میں علم کا خزانہ ہے جو اس کے دماغ میں احادیث ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچے. یعنی جیسے اگر کسی کتاب کی اونلی ون کاپی اور اس کو آپ چھپا دیں تو کتاب کا فائدہ نہیں رہے گا, ایک ہی کاپی ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں. تو اب کتاب نہیں ہے دماغ ہے تو دماغ کو چھپا دو. ایسے واقعات تاریخ میں ملیں گے. یہ قربانیاں دیکھیے پھر اس کے بعد مراجع پہ اعتراض کیجیے. واقعات ہیں یہ پوری پوری لائبریری. بھائی اب کراچی والے اور میری ایج کے اگر مرحوم مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب علی اللہ مقامہ وہ تو ہمارے زمانے کے ہیں نا, ہر کتاب ان کو یاد ہے, کتاب کا پیج نمبر یاد ہے, کتاب کی لائن نمبر یاد ہے. میں نے سوال کیا کہا کہ بیٹا وہ فلا کتاب کے پیج 131 کی لائن نمبر 14 میں تمہارے سوال کا جواب. یہ میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں اپنے. آپ کا کیا اندازہ میں کتنا بوڑھا ہوں؟ کیا حضرت نوح کے بچوں کے ساتھ بچپنے میں میں کھیلتا تھا؟ بھائی مصطفیٰ جوہر صاحب علی اللہ مقامہ ابھی ہمارے زمانے کے عالم. اور ماضی میں جائیے تو مراجع خاص طور پر جن کے دماغ میں پوری پوری کتابیں محفوظ ہیں کنوؤں میں ان کو قید کیا گیا اور صبح و شام صرف مٹی کے برتن میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی غذا اور وہ وہاں سے کتاب لکھ کے بھیجوا رہے ہیں. کیسے؟ پانی پیا, مٹی کے برتن کو توڑا ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں پر, اگر گوشت آیا اور اس کی ایک ہڈی آ گئی کبھی وہ کئی سال قلم بنے, اس سے لکھ کے یہ حدیثیں اور یہ کتابیں بھیجوا رہے ہیں. حتیٰ ایک مسئلہ اس لیے بھی کتابوں میں آیا کہ وہ پیش آیا کہ کیا خون جو نجس ہے اس سے قرآن کی آیت یا امام کی حدیث لکھی جا سکتی؟ خون سے تو آیت تو نہیں, حدیث جس میں نام نہیں ہو کسی امام کا, الفاظ ہو خالی. جیسے وہ حدیث جو آج مجھے پڑھنا ہے اگر وقت ملا, لا ایمان لمن لا حیا اللہ, جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس کبھی ایمان بھی نہیں ہوگا. بھلے کہتا رہے کہ میں مومن میں مومنہ میں مومن میں مومنہ, لا ایمان لمن لا حیا اللہ, اس کے جو الفاظ ہیں امام کے الفاظ ہے لیکن اس میں کوئی مقدس لفظ نہیں. یہ مسئلہ کیوں پیش آیا؟ بہت ساری وجوہات میں, ایک وجہ یہ بھی کہ علماء نے جب دیکھا کہ لکھنے کے لیے کوئی انک نہیں تو اپنے بدن سے خون نکال کر اس سے یہ کتابیں لکھی, مٹی کے ٹکڑوں پہ لکھی, رات کے اندھیرے میں اس کو کنویں کے باہر اچھال دیا. شاگردوں کو پتا ہے کہ روزانہ 3 بجے رات کو جاؤ, جو مل جائیں گے ٹکڑے ان کو لے کر آؤ اور ان کو ایک سیکوینس سے جمع کرو, علم محفوظ ہو جائے کتاب کی شکل میں. اب اس میں یہ بھی ہوا, یہ وہ جملہ جس کے لیے میں نے کہا کہ ہر ایک کے ذہن میں کنفیوژن. اس میں یہ بھی ہوا کہ ایک آدھ ایسا ٹکڑا تھا جو ہاتھ میں نہیں آیا, 10-15 ٹکڑے پھینکے, 15 سے 14 ملے, 15واں مس ہو گئے, تو ذرا سا حدیثوں میں کہیں گیپ آ گئے جس کی وجہ سے پھر مجتہدین کے فتووں میں اختلاف ہوا. لیکن یہ چیز ہر ایک کو پریشان تو کرتی ہے نا. قرآن ایک, معصوم ایک, اسلام ایک, حکم خدا ایک, شریعت ایک, فتوے دو کیوں؟ بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ, تاریخ تو اپنی دیکھیے کہ اگر یہ ساری قربانیاں نہ دیتے یہ ہمارے مجتہدین اور علماء शहीद सानी का मास्टर पीस है किताब लुमा, शाम के उस कैद खाने में लिखी जिसके अख्तिताम इनको शहीद किया गया, इस तरह के सारे बदन से पहले खाल उतारी गई इनकी जिंदगी और इतने कोड़े मारे गए कि इसके बाद वो शहीद हुए, एक हफ्ते कैद खाने में रहे, उसमें लुमा जैसी मास्टर पीस किताब लिख गए। मसला मैंने कहा एक वाकये का हवाला इसलिए दे दूं कि हमारा कोई हौजा इल्मिया नहीं जहां पर यह किताब पढ़ाए बगैर कोई शख्स हुज्जतुल इस्लाम के डिग्री को हासिल कर सके। तो अब ऐसे बहुत वाकयात, उनकी मजबूरियां देखिए फिर उन पर एतराज की कि दो फतवे क्यों बन रहे हैं। तो ये जो मिसिंग लिंक्स है और जैसे जैसे ये मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे बहुत सारे फतवे जो हैं उनमें मुज्तहिदीन पहले इख्तलाफ का करीब आते जा रहे हैं। मैं मिसालें दे दूं लेकिन आज की मजलिस का ये मौजू नहीं और न आज के पूरे मजमे को इससे दिलचस्पी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि खानदान में अदल हो। वो अदल क्या? वो अदल यही है कि अपनी औलाद, ये तो तीन चार मजलिसों में आया कि है औलाद बाप का हक अदा कर, आखिरी हदीस कल आ गई कि गुनाहाने कबीरा में भी सबसे बड़ा गुनाह है वालिदैन की नाफरमानी। कुछ वालिदैन पे भी जिम्मेदारी है कि खाली वन वे ट्रैफिक नहीं, वालिदैन पे भी जिम्मेदारी, बल्कि पहली जिम्मेदारी तो वालिदैन पर है। ये लफ्ज आप बहुत सुनते हैं आके वालिदैन, लेकिन हदीस में लफ्ज आया है आके औलाद का। कयामत के दिन एक मोमिन का हिसाब किताब हुआ, का इसे जहन्नम में ले जाओ। आज मेरी सातवीं मजलिस है तो लोग ढूंढ रहे थे कि लफ्ज जहन्नम अब तक क्यों नहीं आया मौलाना की तकरीर में, कौन ये वो मौलाना तो लग नहीं रहे, नहीं तो आज मैं किसी तरह ले आया इसकी तशरीह फिर आशूरे के बाद की मजलिस में, मजमा नहीं होगा। खैर तो अब जहन्नम वो गया, वो चला, चलते चलते रुक के कहा लेकिन खुदा बंदा तू आदिल, खुदा आदिल, कल बात आ चुकी, मैंने ये गुनाह किया तो कोई और मेरे साथ शरीक है, जो सजा मुझे मिली उसको भी मिलना चाहिए। कहा कौन है तेरा शरीक? कहा मेरे वालिदैन। अच्छा वालिदैन बुला के लाओ। ये अल्लाह ने कयामत में बड़े से बड़े गुनाहगार को हक दिया, कोर्ट है ना, कोर्ट में कभी वन साइडेड फैसला नहीं होता, बड़े से बड़े गुनाहगार को हक कि वो किसी को भी बुलवा सकता। अगर आप तौहीन ना महसूस करें तो यहां तक है कि बाद लोगों की कंप्लेन पे रसूलुल्लाह को बुलवाया जाए। क्या कंप्लेन होगी? कंप्लेन ये होगी बाद गुनाहगारों के, अच्छा खुदा खुदावंदा तेरी शरीयत में ये भी वाजिब है, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। काबुला के लाओ मेरे हबीब को, हबीब तुमने ये हुक्म पहुंचाया था इन लोगों तक, या ये सही कह रहे हैं कि शरीयत में ये हुक्म नहीं है? देखिए बाज अहकाम है मुसलमानों के पास किताबों में लिखा कि सूरह अहज़ाब की इतनी आयतें बकरी खा गई, वो बकरी खा गई तो बकरी के पेट में है ना, हमारे पास तो नहीं पहुंची, हमारे पास ऐसी कोई हदीस भी नहीं पहुंची। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जी वो पैगंबर ने बास चीजें लिख के रखी थी, बकरी बेचारी बकरी ने खा ली, तो बुलाया गया क्या अभी? क्या ये सही कह रहा? क्या ये चीज इस्लाम में तुमने नहीं बताई? पैगंबर को नऊज़ बिल्लाह तौहीन न बन जाए, ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने मसला बताया इसने नहीं सुना। इतना इख्तियार है तो फिर वालिदैन तो कुछ भी नहीं, बुला के लाओ। आए वालिदैन, खुदा बंदा हमें क्यों बुलाया? क्या तुम्हारे बेटे ने शिकायत की है कि जहन्नम में इस गुनाह की वजह से जा रहा, तुम इसके शरीक? एक बार घबरा गए वालिदैन, खुदा बंदा तेरी बारगाह में भी कोई झूठ बोल सकता, हम किस तरह से इसके शरीक? हमने तो इसके लिए अपनी जवानी खाक में मिला दी, बेहतरीन तालीम दिलवाई, बेहतरीन लिबास का इंतजाम किया, बेहतरीन मकान में रखा। जिस माहौल में हम रहते थे वहां तो 16 साल का हो तो कान पकड़ के बाहर निकाल दो, लेकिन हमने इसके बाद भी इसकी सारी जरूरियात पूरी की हैं। दुनिया के बहुत से ऐसे इलाके 16 का हुआ 18 का हुआ वालिदैन पे कोई जिम्मेदारी नहीं, और खाली ये नहीं है कि जिम्मेदारी नहीं है, माहौल ऐसा है कि वालिदैन अदा भी नहीं करते हैं जिम्मेदारी, निकल जाओ, जाओ अपने मकान के अंदर, जाओ अपना इंतजाम खुद करो। खुदा बंदा हमने तो इसके लिए हर कुर्बानी दी, इसकी तालीम के लिए कितनी पॉलिसीज हम खरीद के हम पेमेंट करते रहे। अब ये सारी बातें वो कहेंगे, लेकिन आखिर में खुदा औलाद से कहेगा तुम्हारे वालिदैन ने तो अपनी बात बता दी, तुम बताओ। का यही तो शिकायत है, औलाद कह रही ये सब इन्होंने हमको दिया, अच्छा लिबास हम मानते हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, आजकल की अब जबान इस्तेमाल की जाए, आईफोन 7 नंबर का आता था सबसे पहले बाप खरीद के लाके हमको देता, आईपैड, हर सहूलत, लेकिन दीन कहां सिखाया? ये सारी चीजें जो वालिदैन ने दी, ये दुनिया में काम आने वाली। आप कब्र में मुर्दे के साथ आईफोन दफन भी कर दें तो वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकता। ये सारी चीजें दुनिया में, दुनिया कितने साल की है, 70 साल, 80 साल की। बीबीसी की जो रिपोर्ट थी 115 मैक्सिमम एज इंसान की हो सकती है, और चंद एक्सेप्शनल केसेस में 125, इससे आगे कोई नहीं। और आखिरत जन्नत वो कितने साल की है, कहा कि 100 साल के लिए, तो वालिदैन ने इतनी कुर्बानियां दी, आज जो मिलियन ऑफ एयर्स की जिंदगी है उसके लिए क्या किया? बहुत हुआ तो अलमेहदी के संडे स्कूल में भेज दिया, वो भी बहुत कम वालिदैन होंगे। यही हमारी कंप्लेन है, यह हम पर जुल्म हुआ है, इसका नाम जुल्म है। किसी चीज को डिसबैलेंस कर देना जुल्म कहलाता। जो 50 साल की जिंदगी, जैसे कल मैं आरबी का वाकया पढ़ रहा था, गाय को समझ रहा है कि छोटा है और हाथी बड़ा है तो हाथी वाला सूरा भी बड़ा होगा, लेकिन 100 साल के लिए इतना इंतजाम, आप खुद भी देखिए, आपको कहीं जाके हमेशा रहना, आपने कनाडा का माइग्रेशन लिया, यहां के लिए कुछ और इंतजाम करके आए होंगे, और कराची से लाहौर घूमने गए होंगे एक हफ्ते के लिए, कुछ और इंतजाम करके गए होंगे, 7 दिन का स्टे है तो इंतजाम कुछ और होगा, और अगर हमेशा रहना है तो इंतजाम कुछ और होगा। अब ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, जो 100 साल बच्चे को रहना है इससे ज्यादा तो वालिदैन को भी एक्सपेक्टेशन नहीं, उसके लिए इतने इंतजाम कि आउट ऑफ वे जाके उसकी मदद करते हैं। आउट ऑफ वे का यही मतलब है कि जिस माहौल में आप हैं, मां बाप और मां को ये सारी चीजों की जरूरत नहीं, लेकिन आप फिर भी उसकी मदद करते हैं। और जो हमेशा हमेशा रहे ना, ये आका हुसैन का जुमला, अब तक जो मैंने कहा ये मेरी बात चल रही है, अब जो मैं कह रहा हूं ये आका हुसैन का जुमला है। कल रात को आना था, बात लंबी हो गई तो रह गया, लेकिन चूंकि कल और आज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आका हुसैन का एक बेटा मदीने की मस्जिद में भेजा गया ताकि कुरान सीखे। नऊज़ु बिल्लाह, आका हुसैन के बारे में तो गलत है वो रिवायत, जो बोलना भी नहीं जानते थे और अल्लाह अकबर भी गलत पढ़ते थे बचपने में, कल बहुत तफसील आ गई, कल क्वेश्चन आंसर। लेकिन आका अपने औलाद को आम औलादों की तरह से, जो सिस्टम है, जैसे खानदान बनी हाशिम के सारे बच्चे, हजरत अब्बास उनके टीचर है, उनको तलवार चलाना और नैजा फेंकना और तीर फेंकना सिखाते हैं। उसी में वो वाकया था कि एक बार जनाब ज़ैनब ने ख्वाहिश जाहिर की कि अब्बास, हम औरतों की ये ख्वाहिश है कि जरा तुम्हारे शागिर्दों को देखें, और जनाब कासिम और जनाब अली अकबर में, या जनाब अली अकबर और जनाब अब्बास में, मतलब वो जग नहीं, वो जो ट्रेनिंग का मरहला, और जनाब अब्बास का नैजा अली अकबर के सीने तक पहुंचा, ज़ैनब घबरा के पर्दा हटा के बाहर आ गए, वो सब महरम थे। क्या अब्बास, अगर ये नोके नैजा चुभ जाती अकबर के सीने में तो ज़ैनब पे क्या गुजरती, मैं गज खा के गिर पड़ती। और इसी ज़ैनब ने करबला में वो इम्तिहान भी दिया। तो खैर, अब ये एक सिस्टम, जनाब अब्बास टीचर, और एक वो सिस्टम कि अपने बच्चों को कुरान सिखाने के लिए मौलिम के पास भेजा जा रहा, अलम का सूरा याद करा दिया आका हुसैन के एक गैर मासूम बेटे, आका हुसैन ने उसका मुंह मोतियों से भरा, 1000 दीनार दिए, 100 ड्रेसेस, जो इस्लाम में कंपनसेशन है ब्लड मनी, बहुत बड़ी रकम मानी जाती है। लोगों ने एतराज किया, मौला ये तो फजूल खर्ची हो गई। याद रखिए कि हमारी कौम में एक ऐसा भी एलिमेंट, जिसे तीन के हर काम में फजूल खर्ची लगती। अभी तो इस दफा कुछ पता नहीं क्यों जरा ठंडा है हमारे यहां मामला, या मुझे इत्तला नहीं मिल रही होगी, मैं जरा सा ठंडा हूं आजकल। अय्याम अज़ा शुरू होते इतने मिलियन रुपए शिया आज़ादारी में खर्च कर देते हैं अपने मोमिनी, इतने बिलियन रुपए खर्च हो जाते हैं कराची की या पाकिस्तान की आजादारी में इतने, अरे भाई अगर इसको बचाया जाए तो इतने अस्पताल बन जाएंगे हमारे यहां, और इतने यतीम खाने बन जाएंगे हमारे यहां, और इतनी गरीबों की मदद हो जाएगी हमारे यहां। हर चीज में बस उनको उस वक्त फजूल खर्ची नजर आती है। भाई हजरत जो आप आईफोन लेके घूम रहे हैं, अगर आप ये न लें एक मामूली सा फोन ले लें और ये पैसे बचा के किसी यतीम को दे दें तो नहीं, आका हुसैन के नाम पे जो खर्च है उसमें कमी करना, ये तो हमारी जरूरत है जिंदगी। जिस बेहतरीन गाड़ी में बैठ के आप फर्राटे भरते हुए 407 या 401 पे भागे चले जा रहे हैं, इससे छोटी गाड़ी से भी तो गुजारा हो सकता है, ये पैसे किसी बेवा को दे दो। अब वहां पर बातें इतनी सारी अगर मैं कहने लगा, और बहुत सी फजूल बातें मैं खुद मानता हूं, यानी इशारे काफी हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल मजमा ये इमाम, अच्छा ये जुमला इमाम खुमैनी का कि जब लोगों को बजट में कमी का ख्याल आता है तो सिर्फ इमाम हुसैन और आजादारी ही याद आती, और कोई जगह नहीं है कि जहां लोग फजूल खर्ची कर रहे हैं और उसको कम किया जाए। ये इमाम खुमैनी का जुमला है 1981 का, इमाम खुमैनी का मुहर्रम का खुतबा पढ़ लीजिए। इमाम खुमैनी की तमाम तकारीर और खुतबात कले जमा किए गए 81 का। जब कभी भी आंख खुलती है मोमिन की और कहा कि नहीं कुछ खर्चों को कंट्रोल करना है, थोड़ा सा बजट छोटा करना, सिर्फ आजादारी ही उनको नजर आती। अब इसी YouTube के ऊपर आपको एक निकाह भी मिलेगा जो रहबर आयतुल्लाह खामिनाई ने पढ़ाया, देखिए वो निकाह। गालिबन कनाडा के हिसाब से $10 में पूरा निकाह हो गया, उसमें कोई कमी नहीं करेगा अपने बेटे या बेटी की शादी के मौके। इमाम हुसैन की आजादारी में इतना खर्चा क्यों हो रहा? और ये ज्यादा वो लोग हैं जो खुद कुछ देने को तैयार नहीं है, दूसरों को रोका जा रहा। अब ये मौजू जरा सा बदला में वापिस आऊं तो आका हुसैन पे एतराज हुआ, आका हुसैन पे एतराज हुआ कि एक अलंग का सूरा तो याद कराया है और आपने इतना दे दिया उस टीचर को, तो आका ने जो जवाब दिया वो वही जो आके औलाद वाली हदीस में पढ़ रहा, ये सब मिली हुई बातें। कहा कि जो कुछ मैंने उसको दिया मौलिम को या टीचर को, कुरान टीचर को, कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में जो उसने मेरे बेटे को दिया। इसलिए जो मैंने कहा जुमला सुन, इसलिए कि जो मैंने उसको दिया वो सब दुनिया की जिंदगी की हद तक है, और जो उसने मुझे दिया मेरे बेटे को, वो बेटे को जन्नत के दरवाजे तक काम आने वाला। वही इमाम ने कंपेयर किया 100 साल की जिंदगी और मिलियन ऑफ ईयर्स की जिंदगी, ये कंपेयर करो। और अगर ऐसा नहीं कर रहे तो न सिर्फ ये कि तुम जालिमीन में हो, बल्कि ज्यादा बड़े जालिम हो। जो अपनी औलाद पर जुल्म करे वो ज्यादा बड़ा जालिम माना जाएगा आम जालिम के मुकाबले में। अब तमाम अंबिया के आने का मकसद और तमाम अहमा और औलाद के हवाले से, यकीनन औलाद की उंगली पकड़ के आप सारी जिंदगी नहीं चला सकते, न चलाना चाहिए, उसके अंदर एक सेल्फ डिपेंडेंसी का भी जज्बा पैदा करना। एक मंजिल आती है टीचर, फिर एक मंजिल आती है आप उसको किताब की आदत डालें, उसे पढ़ने की आदत डाल, इसके लिए भी वक्त निकाले। यह हमारी कौम के में से बिल्कुल उठ गया, सलमान फारसी का वाकया पूरा नहीं, आधा भी नहीं, चौथाई भी नहीं, सिर्फ 1%। सलमान फारसी न सिर्फ ये कि आलम इस्लाम के एक ऐसे शख्स हैं जिन पर शिया सुन्नी तमाम फिरके मुत्तफक, बहुत कम शख्सियतें ऐसी हैं जो इतनी ज्यादा महबूब और पसंदीदा हो कि उनके बारे में कोई इख्तिलाफ ना हो। जैसे पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर दुश्मन अहले बैत ने एक जुमला लिखा था अगरचे उस जुमले से हम पूरे एग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस जुमले के पीछे जो ख्याल है वो अपनी जगह किसी हद तक सही भी। बहुत ही मशहूर दुश्मन है अहले बैत, जिसने आशूरे के दिन अपनी बेटी की शादी भी की और मौला पे नऊज़ु बिल्लाह शराब नोशी की तोहमत भी लगाई। खुदा उसके दर्जात बुलंद करे जहन्नम में। खैर, तो खुलासा यह है कि उसने एक बार यह कहा कि शिया हज़रात बड़ी गलती करते हैं कि शहजादी फातिमा का जिक्र बहुत करते हैं, उसके मुकाबले में अगर ये जनाब खदीजा का जिक्र करें तो हमारा इनका इख्तलाफ बहुत कम रह जाएगा, क्योंकि खदीजा को हम भी मानते हैं और वो भी मानते हैं। और चूंकि फातिमा से इख्तलाफ पैगंबर के घर में ही किसी खातून को इतना ज्यादा था कि उनका जुमला था कि जब मैं फातिमा को देखती हूं और ये देखती हूं कि मेरे यहां कोई औलाद नहीं तो मेरी आंखों में खून उतर आता। खैर, तो अब ये तफसील में मैं नहीं जा रहा। कहा कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम, ऐसी शख्सियत को ले जो बिल्कुल न्यूट्रल सब मान रहे, हमें मालूम है कि वो गलत कह रहा। अगर हम इतना जिक्र खदीजा ताहिरा का करें तो खदीजा ताहिरा की भी इतनी बुराई शुरू हो जाएगी। लेकिन सलमान फारसी, कोई इख्तलाफ नहीं है सलमान फारसी, न सिर्फ बल्कि एक और बात सुन ली, गालिबन क्या यकीनन असहाबे रसूल में जिस सहाबी का सबसे ज्यादा तस्किरा होता है वो सलमान। क्यों? हर जुमे को सूरह जुमा की तीसरी आयत व आखिरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, और बात का एक गुरोह है तीसरी आयत, वक्त नहीं रहा, मैंने अभी घड़ी देखी तो मैं तो घबरा गया, ये कौन सी घड़ी है, इतनी तेज चल रही है, तो मजलिस खत्म करना है, अभी तो मैं आयत का तर्जमा ही पूरा नहीं कर पाया हूं। खैर, तो वह आखरी नमिनुम लम्बाई वह लजी बासबीन रसूल अमिनुम यम आयात ही वक्कीम वही वाल मोहम्मद किताब इनकान खबर जलाल मुबीन वह आखरी नमिनुम लम्बाई लकूब। अरे आप तो इतनी हैरत से देख रहे हैं जैसे कभी जुमा नमाज पढ़ी नहीं आपने। ये तीसरी आयत कि मक्के वालों में रसूल आया, लेकिन जो बाद वाली कौम है, पैगंबर ने सलमान के कंधे पे हाथ रख के कहा था ना कि सूरह जुमा की तीसरी आयत में जिस कौम का तस्किरा है वो सलमान और सलमान की कौम है, जो इतनी पक्की है ईमान में कि अगर ईमान सुरैया तक पहुंच जाए, गैलेक्सी आउटर गैलेक्सी, तो यहां भी वो जाएंगे और ईमान को लेके आएंगे। तो अब ये सलमान फारसी हर जुमे की नमाज में इशारतन सही जिक्र आता है इनका, इतनी अहम शख्सियत। कैसे मोमिन ईमान कैसे कबूल किया, 250 साल इन्होंने रसूलुल्लाह का इंतजार किया, बहुत एज थी इनकी, जब पैगंबर की खिदमत में आए तो 250 साल की इनकी एज थी। पुराने जमाने के लोगों की उम्र बहुत होती थी, सुना कद भी बहुत होते थे, वो तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन उम्र का तो तारीख में जिक्र, 250 साल पैगंबर से कितना पहले पैदा हुए, 200 साल पहले, और पैगंबर की तलाश में कहां कहां की ठोकरें नहीं खाई, ईरान से निकले इराक पहुंचे, इराक से निकले फलस्तीन पहुंचे, फलस्तीन से निकले मिस्र पहुंचे, मिस्र से निकले मदीने पहुंचे, 200 साल का सफर। ये जज्बा जो पैदा हुआ कि आखिरी रसूल को ढूंढना, हम भी तो आखिरी इमाम का नाम लेते हैं, कोई जज्बा है, ठंडे बैठे हुए हैं बस दुआ कर लेते, और दुआ भी इस हालत में कि जुल्म करते जा रहे हैं दुआ करते जा रहे हैं। रुब्बत आलिल कुरान वल कुरान यलअन, कितने ऐसे लोग हैं जो तिलावत हदीस तिलावत कुरान कर रहे हैं, सामने रखकर कुरान उन पर लानत कर रहा, हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं कि आखिरी इमाम आ जाए जुल्म का खात्मा करे, और वही दोनों हाथ जुल्म से भरे हुए, लेकिन एक जैसी बहुत बातें रिपीट हो रही है मजलिस में। सलमान फारसी इतना पक्का मोमिन के ईमान के 10 दर्जे हैं, सलमान को 10 के 10 हासिल, कुरान में जिक्र, सूरह जुमा में आयत नाजिल करके अल्लाह ने कयामत तक के लिए जिक्र सलमान को इबादत का हिस्सा बना दिया। 200 साल पैगंबर को ढूंढा, कनाडा के पुरसुकून माहौल में बैठ के नहीं, मुख्तलिफ इलाकों में जहमतें उठा के, मगर ये सलमान सलमान बने कैसे, परदादा की एक अनइंटेंशनल एक्शन की वजह से। इनके परदादा को कहीं से किताब मिली थी, अब उस जमाने में तो किताब और भी कीमती, बहुत कीमती चीज समझ के लाके घर के अंदर रख दी थी। ना खुद पढ़ी, ना उसके बेटे ने पढ़ी, ना उसके बेटे। सलमान जब बड़े हुए इनको शौक हुआ पढ़ने का, जब पढ़ना सीखा तो किताब नजर आई, किताब उठाई। यह किताब किसी नबी की किताब थी जिसमें आखिरी नबी के हवाले से सारी निशानियां और हालात। ऐसा सलमान बदले, बदले का मकसद यह कि जिस कौम में थे वो आग की पूजा करती, सलमान करते थे कि नहीं ये तो साबित नहीं है, लेकिन उस कौम। और वहां से निकल के मदीने आए, एक परदादा की खरीदी हुई एक किताब। आपको तो कोई फ्री भी किताब दे तो नेक्स्ट ईयर जब आप घर का कचरा निकालेंगे तो सबसे पहले वो किताब। ये मेहंदी सेंटर में पहले 3 दिन बाहर एक टेबल लगी हुई थी, बहुत सारी किताबें पड़ी हुई, इससे ज्यादा कहना नहीं चाहता, पड़ी हुई थी, अब तो नहीं है। खैर, तो खुलासा ये है कि घर, अदालत, औलाद की तरबियत, उसके बाद इमाम को बुलाएं तो इमाम आएंगे, उससे पहले नहीं। और ये जो तरबियत औलाद का मसला आज खुद ब खुद आ गया। आज मुझे फितने की तशरीह करना थी, लफ्ज फितना, तो इंशाल्लाह कल करना ही पड़ेगी क्योंकि सिर्फ 2 ही मजलिसें हमारे पास। आशूरे के बाद की 2 मजलिसों में तो ढूंढना पड़ेगा मुझे डबल डबल चश्मा लगा के कि कोई है मोमिन के मैं बयान शुरू करूं। खैर, तो ये आखिरी 2 मजलिसें, और सवाल चूंकि इन लोगों का है जो पहली मजलिस सुन चुके हैं, तो इसका जवाब इनको देना मेरी जिम्मेदारी है। तो कल आज कुरान ने ये कहा तो है कि इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना, मगर अभी बात हो रही है कि जुल्म ये भी जो हम बिल्कुल लापरवाह हो गए, वो खातून जो अपनी बच्ची को सर पे स्कार्फ पहनाना सिखाती, सर पे स्कार्फ डालकर पहनाना सिखाती, ये है खिदमत इमाम वाली, ये है इमाम जमाना को सही तरीके से बुलाने वाली। वो बाप जो अपने बच्चे को मुसल्ले पे बराबर में खड़ा करके नमाज पढ़ाना सिखाता, ये है कि अगर इमाम को पुकारे कि मौला आ जाइए तो ये डिजर्व करता है कि पुकारे। एक जुमला में अपनी तरफ से कह रहा हूं, इसमें कोई अल मेहंदी का मेरे ऊपर प्रेशर तो छोड़े, कोई रिकमेंडेशन भी नहीं। वो बाप जो अपने बेटे को डोनेशन की अपील के जवाब में $100 और $200 की बात सिखाता, ये है जो इमाम जमाना को इसके बाद घर जाके पुकारे अज्जलल्लाह, तो ये हक रखता। लेकिन हर वो बाप और मां मौला आ जाइए, मौला आ जाइए, और फिर याद रखिए कि आप बहुत अच्छी जगह बैठे, बहुत पुरसुकून जगह बैठे, लेकिन आए तो जिन इलाकों से हैं, पाकिस्तान में अय्याम अज़ा शुरू होते ही शहादतों का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका। खैर, खत्म तो कभी नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा सा ये स्लो हुआ। ये टेररिस्ट लोगों के तरीके आपको पता है कि थोड़ा सा स्लो करते हैं अपने को, जब जरा सा हुकूमत या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज थोड़ा सुस्त पड़ते हैं फिर दोबारा ही आ जाते हैं। पाकिस्तान में भरपूर तरीके से मुख्तलिफ शहरों में साहिबान ईमान की शहादतें, कोयटा में भी, न सिर्फ यह कि जायरीन के बस, लेकिन तुरफा तमाशा देखिए कि इस दफा खास औरतों को टारगेट बनाया गया जिनको हमेशा छोड़ दिया जाता। कराची में मुसलसल वो खवातीन की मजलिस में फायरिंग के लिए गए थे जिसके नतीजे में 2 नौजवान जख्मी हुए। आपको पता है ना कि औरतों की मजलिसें पाकिस्तान में और कराची में कितनी होती, बजाहिर जाहिरी एतबार से कह रहा हूं, किस किस के लिए सिक्योरिटी मुहैया की जाए। मर्दों की तो फिर भी कम, औरतों ये सिलसिला जारी। लेकिन ना तो आप हजरात इन खबरों पर तवज्जो देते हैं, ना किसी इमाम बारगाह में इन शोहदा के लिए फातिहा पढ़वाई जाती। क्यों? अब 2, 4, 5 शहीद की खबर आ जाए तो हम इसको समझते ही नहीं है कि कोई खबर है। कम अज कम 100 दुश्मनान अहले बैत लोगों को शहीद करे तो जरा सा हमारे कान खड़े होते हैं, कुछ करना। क्या करना है? फातिहा पढ़ना। दुश्मन कामयाब तो हो गया है ना, हमारा खून उसने इतना हकीर तो कर दिया है ना, हमारा खून उसने इतना जाय तो कर दिया है कि 2, 4, 10 शहादतें फातिहा पढ़ने के लिए भी हक नहीं रखती। अगरचे ये चीज थोड़ा सा फितरी भी है, वो मजलिस याद कीजिए, कसाई का पेशा न इख्तियार करो, गर्दन काटते काटते दिल सख्त हो जाएगा। तो शहादत की खबर सुनते सुनते ही कौम की हालत हो गई है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब ऐसा वाकया पेश आएगा तो फातिहा तो मरने वाले के लिए, जो जिंदा बाकी हैं, जिनकी जान हर लम्हे खतरे में, उनके लिए है ज़ुहूर इमाम, वही हमारा मसला मिसाल करेंगे। और वो दुआ के लिए आदमी को खुद आदिल बनना पड़ेगा। लेकिन अब आज बात की गुंजाइश नहीं रही, और चूंकि आज आखिरी रात है वीकेंड की, कल तो वीकडे शुरू हो रहे हैं, तो कल की मजलिस तो बिल्कुल टाइम में खत्म करना होती है। बहरहाल ये आखिरी बात, और इसके लिए हाँ भाई मैंने कहा ये आखिरी रात है कि जिसके नेक्स्ट डे छुट्टी है, कल की जो रात आएगी उसके नेक्स्ट डे वर्किंग डे होगा, तो वो कैलकुलेशन में बहुत पहले से करके रखता हूं भाई, आपका ख्याल करना है। तो खुलासा ये कि ये हमारे और आपके लिए पैगाम मिल रहा, जिनके बच्चे हर लम्हे फिसल सकते हैं, शैतान जरा शैतान का भी जिक्र आ जाए, एक हदीस सुन लीजिए जो इमाम शैतान के हवाले से बता रहे हैं। कहा कि शैतान सबसे बड़ा कारनामा इसको करार देता, वो एक रिवायत में पूरी तफसील से पढ़ता हूं जो इतनी दफा पढ़ ली कि रिपीट करने को दिल नहीं चाह रहा, कि शैतान पूरे दुनिया का सर्वे करता रहता है कि उसके जो शागिर्द हैं, ये हाथ को कहीं और ले जाता हूं, कि जो उसके शागिर्द है ना वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। भाई कहीं ना कहीं तो हाथ जाएगा ना, फिर बाद में लोग ऐसी बातें भी पकड़ते हैं कि मौलाना जब आप लफ्ज़े शैतान कह रहे थे आपका हाथ हमारी जानिब आ रहा था, हमें क्या समझा है आपने। तो खुलासा ये है कि वो शैतान पूरी दुनिया का जायजा लेता है, मेरे शागिर्द मेरी टीम क्या काम कर रही है। तो एक इलाके में पहुंचा और मीटिंग कॉल की, तुम लोग क्या काम कर रहे हो, कल मसलन कल तुमने क्या किया। एक ने कहा कि ए उस्ताद मैंने एक गुनाह का, एक मोमिन को शराब पिलवा दी, और एक ने कहा कि मैंने एक मोमिना को बेहिजाब घर से बाहर निकाल दी, और एक ने कहा कि एक नौजवान को मैंने पूरी रात म्यूजिक में या डांस में या नाइट क्लब में गुजरवा दी, और एक ने कहा कि एक बिजनेसमैन को मैंने कल सूद के रास्ते पे लगा दिया, और एक ने कहा कि एक मुकद्दस बुजुर्ग की कल मैंने नमाजें कज़ा करवा दी। गर्ज ये कि पूरी लिस्ट, आखिर में एक ने कहा कि मेरे उस्ताद कल मैंने बहुत छोटा काम किया, क्योंकि किसी बड़े काम का मुझे चांस ही नहीं मिला। क्या काम किया, कहा कि एक जगह पे एक संडे स्कूल टाइप का स्कूल था, उस्ताद बच्चों को वाजिबात के मसले सिखा रहा था। मैंने कहा मैं शराब तो पिला नहीं सका, बेपर्दगी ला नहीं सका, म्यूजिक ला नहीं सका, नमाजें कजा नहीं करवा सका, हराम रोजी पे लोगों को नहीं ले गया, चलो इन्हीं बच्चों के ऊपर कोई काम करो। चुनाचे मैंने बाहर निकल के, जहां पे ये बच्चे थे बाहर निकल के खेल तमाशा शुरू किया, पहले जमाने वाला खेल, बंदर लेके आया, बंदर को नचाना शुरू किया, वो आवाज सुन के बच्चे एक एक करके बाहर आ गए। उस दिन उनकी दीन की तालीम नहीं हुई, शैतान ने कहा शाबाश गोल्ड मेडल तेरे लिए, सबसे बड़ा कारनामा तूने अंजाम दिया, क्योंकि शराबी शराब पी के कल तौबा कर लेगा सारा गुनाह माफ, रहमत है अल्लाह, रहमतुल लिल आलमीन है रसूल, रहमत का टुकड़ा है ज़हरा, बड़े से बड़ा शराबी सारी जिंदगी शराब पी आज तौबा कर ले हर गुनाह माफ, जैसे कुछ कभी शराब पी ही नहीं, पूरी जिंदगी में हिजाब रहने वाली औरत एक बार सच्चे दिल से तौबा कर ले, तो अब इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि हिजाब वैसे ही उस पर माफ हो गया, बगैर हिजाब के हर गुनाह से बच गए। तौबा अल्लाह ने रास्ता रखा, मगर तू ने बिल्कुल ठीक काम किया, जब बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि हराम है क्या तो तौबा किस बात की करेगा। भाई तौबा आप शराब पीने पे कर सकते हैं ना, पानी पीने पे तो कभी आप तौबा नहीं करेंगे, क्योंकि पानी हराम है ही नहीं, तो जिसे उसे पता ही नहीं कि ये हराम है, पानी भी हराम होता अगर उसका खुमस नहीं निकाला गया, पानी भी हराम होता अगर किसी मोमिन का हक मार के वो मकान खरीदा गया, तो लेकिन एक आम हवाले से बात, तूने बच्चों को इतना दूर कर दिया दीन से कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम गुनाह कर रहे हैं, जब पता ही नहीं चलेगा तो तौबा भी नहीं करेंगे। जो अल्लाह ने रहमत का एक रास्ता रखा है वो तूने बंद करवा दिया, इनके लिए तेरा कारनामा सबसे बड़ा कारनामा ये है हमारे बच्चे, कि अगर इनको नहीं बताया जाए तो वाकान उनको क्या पता चले। लेकिन उसके बावजूद हम इतने लापरवाह, आईफोन दे दिया, आईपैड दे दिया, खेलने की कुछ चीजें दे दी, अच्छा स्कूल चले, हाँ वालिदैन बड़ी भारी फीस देते हैं, आसान नहीं है यहां पैसे कमाना, जो आपका जुमला है वो सही जुमला है। आप कहते होंगे पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों से कि कनाडा में डॉलर धड़क पे नहीं रखते कि हम तोड़ के तुम्हें भिजवा दें, मसलन पाकिस्तान से ज्यादा मेहनत की जाती है, लेकिन ये मेहनत करना पड़ेगी, ये प्राइस है जो आपको पे करना है यहां आने की शरण। हम और आप हर वक्त हमारे बच्चे बहक सकते हैं, एक बंदर का तमाशा हो तो वो बहक जाते हैं, और हम लापरवाह तो अहले बैत के घर में जाके देखिए क्या मिसाल है। चाहे वो हुसैन का अकबर हो, चाहे वो फरवा का कासिम हो, चाहे वो रबाब की सकीना हो, चाहे वो जैनब के ओनो मोहम्मद हो, जरा जाके देखिए खानदान अहले बैत, वहां कोई इम्कान है? मैं क्या करूं, मेरे दोनों हाथ शरीयत ने बांध दिए हैं तो मैं मासूमीन को 14 से 15 नहीं कर सकता। लेकिन क्या जनाब अब्बास, जनाब अली अकबर, जनाब कासिम और खानदान अहले बैत के जो दूसरे इस अंदाज के बच्चे, उनके बारे में एक लम्हे के लिए भी एक गुमान आता है कि चूंकि वो 14 मासूम में नहीं है, यानी मासूम नहीं है टेक्निकली, तो गुनाहगार होंगे ना उसको बिल्ला। खुद ये ख्याल ही कितना बड़ा गुना। ऐसे बच्चे और उसके बावजूद उनकी तालीम और तरबियत का कितना बेहतरीन सिस्टम, कभी आका हुसैन ने बनाया, कभी मौला अली ने बनाया। अब बताइए जैनब कुबरा जो साहिबाए इस्मत सुगरा, इस्मत कुबरा बड़ी इस्मत, मासूम वो 14, मगर जैनब भी अगर हम टेक्निकली मासूम ना कह सके तो मासूम से कम नहीं, बल्कि जैनब तो वो है कि कितने मासूमीन के सर इनके सामने एहतराम से झुके। मगर क्या मौला अली ने जैनब को बचपने में बिठा के उसी अंदाज से दीन नहीं बताया जिस तरह एक आम गुनाहगार जाहिल बच्चे को सिखाया जाता? वो वाकया जैनब के उस बचपने का है जब बाबा के पास बैठी और एक सवाल किया, बाबा आज आपने मुझे ये पढ़ाया कि हर मोमिन को अल्लाह से मोहब्बत करना, तो एक दिल में एक वक्त में एक मोहब्बत आएगी कि एक से ज्यादा आएगी? एक ही आएगी। तो बाबा फिर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो हमसे तो मोहब्बत नहीं करेंगे। कहा कि तुमसे भी मोहब्बत, तो बाबा एक दिन में दो मोहब्बतें कैसे जमा हो गई? कहा कि तुम लोगों से भी मोहब्बत अल्लाह की वजह से। अब ये देखिए इसमें बहुत पैगाम है, लेकिन चूंकि मुझे तो सिर्फ ये बताना था कि किस तरह जैनब जैसी आलिमा गैर मुअल्लिमा फहीमा गैर मुफहिमा को भी अली अपने सामने बिठा के इस तरह से पढ़ा रहे कि हमें ये लगे कि जैसे हम अपनी बच्चियों को अपने सामने बिठा के दीन सिखाते हैं। ये वाकया भी हजरत अब्बास के बचपने का है ना। आजकल तो बहुत पॉपुलर हो गया हजरत अब्बास का वो खुतबा, जो मैंने भी कई बार पढ़ा, और उन मोमिनीन से माजरत के साथ जिन्होंने तीसरे चौथे दिन आके कहा था मौलाना 3 साल पहले आप पढ़ के गए थे, बहुत मजा आया था, उसको दोबारा पढ़ दीजिएगा। कल की रात, आने वाले कल की रात हजरत अब्बास की रात, हो सकता है एक आज जुमला मैं उसका पढ़ दूं, लेकिन वो खुतबा जो हजरत अब्बास का है, जब कभी मैं पढ़ता हूं, जितने खुतबे दिए जाते हैं मिंबर चाहिए, 2 मिंबर बहुत अजीब, एक गदीर खुम का मिंबर बहुत अजीब था जो किस तरह रसूल ने बनाया, और एक अब्बास का मिंबर बहुत अजीब था क्योंकि अब्बास ने यह खुतबा खाना काबा की छत पर खड़े होकर दिया, खाना काबा की छत अब्बास का मिंबर बनी। लेकिन हमेशा ये कहता हूं जब भी वो खुतबा पढ़ता हूं, ये जुमला कल का है लेकिन आज मौजू की वजह से आ गया, कि अब्बास के जितने लकब हमारे यहां मशहूर, उनमें एक बहुत अहम लकब है जो मशहूर नहीं, अल फकीह। हबीब इब्ने मुजाहिर के मसाइब में लफ्ज फकीह को समझा चुका हूं, इल्म की इंतहा पे पहुंचा हुआ। अब्बास की शजाअत और अब्बास की इताअत और अब्बास की वफा इतना ज्यादा जाहिर हो गई कि इल्म अब्बास जरा इसके नीचे छुप गया। और ये सेम वो ट्रेजेडी जो शहजादी कौनैन के हवाले से हुई कि शहजादी की बाकी खसूसियात इतनी नुमाया हुई कि इल्म फातिमा वो लोगों के जहन से निकल गए। कि जिस इल्म में फातिमा से अइम्मा इस्तिफादा करते हैं, हम और आप नहीं, अइम्मा मुसहफे फातिमा को पढ़ते हैं और लोगों को उससे पढ़ पढ़ के मसले बताते हैं, लेकिन इल्म में फातिमा इस तरह मशहूर नहीं है जैसे मौला का इल्म मशहूर। और तारीख का भी जुमला है, अकीदे का भी, कि फातिमा का इल्म ऐसा ही है जैसे अली का इल्म, अब ऐसा ही है, कमी कोई नहीं है, लेकिन हालात की वजह से शहजादी की दीगर खसूसियात, तो अब्बास का इल्म अपनी मां फातिमा जहरा की तरह से अब्बास की दीगर खसूसियात की वजह से लोगों के सामने नहीं आया, वो खुतबे की शक्ल में आया तो वो भी हालात ऐसे थे, वरना वो खुतबा भी ना दिया जाता। मगर ऐसा अब्बास अली बचपने में अपने सामने इस तरह बिठा के पढ़ा रहे, यह अब्बास का ही तो वाकया है ना। अली ने अजाब यह इल्म 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 की इतनी बात हुई है, तो इसके अंदर खाली दीन का इल्म नहीं है, दुनिया की टेक्नोलॉजी भी। अली अब्बास को मैथ सिखा रहे हैं और गिनती याद करा रहे हैं। ये वाकया बहुत मशहूर है ना कि बेटा कहो अहद एक, अब्बास ने कहा एक, कहा बेटा अब कहो इसनैन दो, रुक गए अब्बास, दो नहीं कहा। बाप ने कहा कि बेटा ये गिनती है एक एक के बाद दो, कहा जिस जबान से एक कह दिया आप उस जबान से दो कहने का दिल नहीं चाह रहा, कुल हुवल्लाह अहद, अहद तो एक जाते खुदा। ये अब्बास का बचपना, जहां अब्बास की मारिफत पता चल रही, वहां अली का तरीका पता चल रहा है कि अब्बास जैसे बेटे को भी जिसे कोई जरूरत नहीं किसी दुनियावी मदरसे में जाके कुछ सीखने की, एक तरीका कायम कर रहे हैं कि तुम्हारे बेटे क्या अब्बास है, तुम्हारी बेटियां क्या जैनब जैसा इल्म रखती, और अगर नऊज़ बिल्ला तुम कहो हां तो अब्बास और जैनब को भी पढ़ाया गया, हां तुम ये कह दो कि जैनब से भी अफजल है मेरी बेटी, अब्बास से भी अफजल है मेरा बेटा, तो फिर अलग बात, फिर मत बताना उनको दीन ना सिखाना उनको दीन, बल्कि पहले खुद सीखना। अच्छा खैर, तो अब यह है कि जहां हर बच्चा मासूम ना सही तो मासूम नजर आ रहा, उसको भी इस अंदाज से सिखाया जा रहा, पढ़ाया जा रहा, नसीहत की जा रही। और इसमें खास तौर पे हमारे सामने एक जुमला जो बहुत कम पढ़ा जाता है, खास तौर पे हमारे सामने कासिम का नाम आता है। अली अकबर कौन है? शबीह रसूल खुदा। और अब्बास कौन है? शबी है अली मुर्तजा। लेकिन जनाब कासिम के लिए है कि इनका लहजा और इनकी आवाज बिल्कुल आका हुसैन का लहजा और आवाज, यानी अगर कोई पर्दे के पीछे से गुजर रहा या दीवार के उधर से गुजर रहा और कासिम कुछ कह रहे हैं तो वही ये समझेगा कि हुसैन खुतबा दे रहे। और ये खाली लहजे के हवाले से भी नहीं, मैटर के हवाले से। आपने शायद ये जुमला तारीख में कभी ना देखा हो, अब्बास के लिए, अकबर के लिए। अब नऊज़ु बिल्लाह इनकी तौहीन नहीं कर रहा हूं, मुख्तलिफ सिफतें मुख्तलिफ औलादों से जाहिर होती, जो कासिम के लिए कि कासिम का लहजा जो बिल्कुल हुसैनी लहजा था, तो कासिम की तिलावत कुरान सुनने के लिए मदीने के लोग गुरोह दर गुरोह आके जमा हुआ करते थे। अब्बास की तिलावत कुरान भी कम नहीं होगी, ये नऊज़ु बिल्लाह क्या कंपेयर भी नहीं कर रहा हूं, और कासिम के इस पहलू को वाजे करना है तो ये जुमले कहना भी पड़ रहे हैं। अली अकबर की तिलावत के हवाले से नहीं, कासिम की तिलावत, ऐसा हुसैनी अंदाज और ऐसी बेहतरीन तिलावत खानदान अहले बैत में, ये तिलावत के एतबार से कासिम। और फिर इल्म कासिम भी हमारे सामने आता, लेकिन जरा इस तफसील में चला गया तो मसाइब कभी वक्त नहीं रहेगा, तो सिर्फ इतनी सी बात अर्ज कर दूं, जुमला मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है, कि अली और हुसैन वो जो हर एक के यतीमों के लिए सबसे बड़ा सहारा, यतीमों का सहारा है अली की जात, और अली के बाद यतीमों का सहारा है हुसैन की। तो जो अपने बड़े भाई का यतीम कासिम होगा उस पर हुसैन ने क्या मोहब्बत और शफकत जाहिर न की होगी। जनाब उम्मे फरवा खानदान अहले बैत ही नहीं बल्कि आम अरबों का भी तरीका था कि अपनी बच्चियों के कई नाम रखते थे। एक पुकारने का नाम होता है, एक ससुराल में जाके नाम मिलता है, एक असली नाम होता है। तो आपको खानदान अहले बैत में जो खवातीन है उनके कई कई नाम मिले, आठवें इमाम की वालिदा, सातवें इमाम की वालिदा, दसवें इमाम की वालिदा, जमाने के इमाम की वालिदा, नरजिस है कि सौसन है कि सलील है। हक यह है कि सारे नाम औरतों के एक से ज्यादा नाम, और ये हमारे यहां पाकिस्तान में भी अब रवाज हो रहा कि असली नाम अलग है पुकारने का अलग। तो जनाब उम्मे फरवा का नाम रमला भी है और नजमा भी है और सलमा भी है और उम्मे फरवा भी है। अब चूंकि अब और जिससे पहले आ जाए कुन्नियत, अरब पुकारने में उसी को इस्तेमाल करते हैं, तो उम्मे फरवा के नाम से मशहूर हो गए। इमराउल कैस अरब का एक बहुत मशहूर आदमी। अच्छा, एक तो अरबी के सबसे बड़े शायर का नाम है इमराउल कैस, वो अरबी का गालिब है, वो अरबी का इकबाल है, वो अरबी का अनीस है। इमराउल कैस वो नहीं, ये इमराउल कैस यमन में रहता है। यमन में मौला 6 महीने गवर्नर रहे, उसके असरात आज तक आप देख रहे हैं। वो ये जुमले को मैं लफ्ज फितना की तशरीह जिस मजलिस में करूंगा, दो ही मजलिसें या कल या परसों, उसमें मजीद वाजे करूंगा। तो ये भी ईमान ले आया, मदीने आया उस वक्त जब यमन में इसकी बीवी मर गई और 2 बच्चियां छोड़ के मरी, बल्कि 3 बच्चियां थी, मां मर गई। अब बाप के लिए अपनी बच्चियों को बगैर किसी औरत की मदद के पालना बहुत मुश्किल है, और वो जो 2, 3 में से 2 हैं वो उस उम्र की है कि जो शादी की उम्र होती है। चुनाचे मदीने आया, मौला से मिला और कहा कि या अमीर अल मोमिनीन, मेरा एक मसला कि 3 बच्चियां बगैर मां के हैं, बिन मां के, 2 की तो शादी की भी उम्र है, एक का नाम महिया था, एक का नाम सलमा था, एक का नाम सलामा था। इमराउल कैस की 3 बेटे, तीसरी वाली तो बहुत छोटी थी, 2 साल। मौला ने कहा कि अगर मैं अपने खानदान का रिश्ता दूं, देखिए ये जुमला यकीनी नहीं आया क्योंकि यही जुमला मैं कल हजरत अब्बास की वालिदा के हवाले से कहूंगा, तो तफसील में नहीं जा रहा। मौला इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या, तो सबसे बड़ी जो बेटी थी महिया, उससे मेरे मौला ने शादी की। बाद उलमा ने लिखा है कि यह अली की आखिरी बीवी थी, 10 शादियां की हैं, कहा यह आखिरी थी। उसकी छोटी बहन से अपने भाई हसन की शादी की जो 15 साल की थी, सलमा। और यही फिर खानदान अहले बैत में आके उम्मे फरवा कहला। और ऐसी शादियां आपको अहले बैत के खानदान में बहुत मिलेंगी कि अगर 2 बहनों की उम्र में बहुत फर्क है तो एक की शादी बाप से हुई, एक की शादी बेटे से, और तीसरी तो 2 साल की थी, वो अपनी बड़ी बहन के साथ ही रही। जब वो बड़ी हुई तकरीबन 17 साल के बाद, 16 साल बाद, 52 हिजरा, तो फिर उसकी शादी जिसका नाम सलामा है आका हुसैन से हुई और रबाब उनको लकब दिया गया। तो उम्मे फरवा और रबाब दोनों सगी बहने, इमराउल कैस की बेटियां, और एक की शादी आका हसन से हुई, दूसरी बहुत छोटी थी। जब उनकी बड़ी बहन उम्मे फरवा बेवा हुई 49 हिजरा में, उस वक्त तक भी गैर शादीशुदा थी, उसके 3 साल बाद उनकी आका हुसैन से शादी। अब उम्मे फरवा अल्लाह ने फिर 16 साल रही आका हसन के घर में, उसके बाद बेवा हुई। और इमाम हसन के कई बेटे, हसनी सादात का तो एक बहुत बड़ा सिलसिला, लेकिन बेटी सिर्फ एक, जिसकी शादी बाद में 4थे इमाम से हुई और नस्ल इमामत उसमें भी चली, वो भी उम्मे फरवा से थी। इमाम हसन के सारे बेटे एक मां से नहीं। जनाब कासिम का नाम तो सुना है, और उनकी एक बहन, एक ही बहन थी इस पूरे इमाम हसन की, एक ही बेटी थी। उम्मे फरमा के यहां जब कासिम की विलादत, अब तो बाकायदा शाबान में एक तारीख भी हम लोग मनाते हैं, तो उसके बाद उम्मे फरमा ने एक अजीब ख्वाब देखा और इस ख्वाब ने उम्मे फरमा को बहुत परेशान कर दिया। लेकिन अहले बैत के तरीके के इतबार से घर की ख्वातीन कोई भी मसला हो तो आका हुसैन के पास नहीं जाती। एक अहले बैत के पास हया का एक स्टैंडर्ड है, हमारे यहां का अलग, वहां का अलग। कहां जाएगा हर आदमी? जनाब ज़ैनब के पास। अहले बैत का तो ये माना हुआ और बनाया हुआ उसूल था। उम्मे फरवा अपना ये ख्वाब देख के बहुत परेशान है, दिल चाह रहा है कि शहजादी ज़ैनब से पूछे, मगर पता नहीं क्यों इतना डर लग रहा है अपने ख्वाब से। ये गार वाला डर नहीं है, ये वो ख्वाब है कि जिसके मनाजिर तशवीश में मुब्तला कर दिया। लेकिन खानदान का बड़ा खाली इसलिए बड़ा नहीं होता कि वो सबका एहतराम बटोरे और ईद और बकरीद में उसको झुक के सलाम करे, वो सबकी निगरानी भी करता रहता। ज़ैनब कुबरा ने देखा कि आज सुबह उठने के बाद से मेरी भावच अभी आकाशन जिंदा है, बहुत परेशान सी है, कुछ काम भी कर रही है तो साफ महसूस होता है कि तवज्जो कहीं और। कहा कि उम्मे फरमा क्या बात है, मैं मौजूद हूं, बताओ सही। तो शहजादी ख्वाब देखा है, बोलने को दिल भी नहीं चाह रहा लेकिन समझ में भी नहीं आ रहा क्या कहा, क्या ख्वाब देखा। कहा मैंने देखा कि मैं जन्नत में पहुंच गई और बेहतरीन बाग में मैं खड़ी और मेरे सामने एक पौधा है, अचानक उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा फूल उगा, अचानक उगा और वो पूरा सुर्ख रंग का, बड़ा ही खूबसूरत। उसको देख के मेरा दिल चाहा कि मैं उसे तोड़ू और मैं आगे बढ़ी। अभी मैंने अपना हाथ फूल के करीब पहुंचाया था कि वो खुद ब खुद टूटा, जन्नत का फूल जमीन पे गिरा। लेकिन शहजादी अजीब बात यह हुई कि जमीन पे गिरते ही वो टुकड़े टुकड़े हो गया, हर पंखड़ी अलग हो गई। फूल कोई शीशे का गिलास नहीं है कि टूटा तो गिर के टूट गए, फूल एक हाथ पंखड़ी तो अलग हो लेकिन टुकड़े टुकड़े हर जुज उसका अलग हो गया। और फिर मैंने देखा कि सामने से मेरे आका हुसैन आ रहे, उन्होंने मुझे नहीं देखा यानी तवज्जो नहीं दी। वो उस फूल के करीब पहुंचे और उसके टूटे हुए टुकड़ों को उठा के एक रूमाल में जमा किया और फिर उस रूमाल को उन्होंने बांधा और लेके चले। शहजादी मेरी आंख खुल गई, अब मेरी समझ में नहीं आता ये फूल क्या था, जन्नत का फूल और कैसे टूटा, और फूल इस तरह से तो बिखरता नहीं है, ये एक एक पंखड़ी अलग हो जाए और आका का आना। मैं बहुत परेशान हूं, यह ख्वाब मेरी समझ में नहीं आ रहा। शहजादी ने कहा कि चलो मेरे साथ भैया के पास। भैया हुसैन उम्मे फरवा ने यह ख्वाब देखा, आका ने कुछ नहीं कहा, आंख में आंसू आए, एक जुमला था वो कुरान की आयत, फसबिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनल अंबिया। आयत का तर्जमा है सब्र करो जिस तरह बड़े बड़े अंबिया ने सब्र किया। उम्मे फरवा अभी मैं नहीं बता सकता कि इस ख्वाब का मतलब क्या है लेकिन तुम अपनी आंखों से इसको देख लो। और आशूरे की रात आ गई, वो मौका और मरहला आ गया कि अब उम्मे फरवा अपने ख्वाब को अपनी आंखों के सामने से देखेंगे। मगर अजीब बात यह है, अजीब बात यह है, जब ख्वाब देखा था शहर मदीना में थी, आरामदेह माहौल में थी, इज्जत और एहतराम के साथ पूरे हिजाब में थी, और ख्वाब देख के दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। और जब ख्वाब की ताबीर आई तो करबला में सबसे ज्यादा खुश बीबियों में से एक उम्मे फरवा थी। ख्वाब ने रुला दिया और ख्वाब की ताबीर ने उम्मे फरवा को मुस्कुरा दिया। लेकिन बात बहुत फैल गई है तो अब जरा सा मुख्तसर करो। शब आशूरा आ गई और एक बार हुसैन ने पहले तो तमाम असाब का इम्तिहान लिया, चिराग गुल करके, और जब असाब बावफा पाया तो फिर हुसैन खेमे के अंदर आ, सैने खेमा, और बीवियों के खेमों का जायजा लेना शुरू किया, सैदानियों को भी देखा, मुखद्दरात इस्मत व तहारत को भी देखा, वो भी अपने इम्तिहान में पूरी, आखिर में अपने खेमे में पहुंचे जो आज भी करबला में जनाब ज़ैनब के खेमे के साथ बैक टू बैक मिला हुआ, और जाके मसरूफ इबादत हो गए। आधी रात तो इन्हीं मसरूफियात में गुजर गई, पहले मर्दों का इम्तिहान फिर औरतों का इम्तिहान, इंशाल्लाह शबे आशूर या रोजे आशूर ये मसाइब तकरार होगी, जिंदगी भर आपने सुना। अब अपने खेमे में आ गए जिस मकसद के लिए ये रात ली थी, यही तो कहा था ना कि अब्बास हमारे साथ से कहना कि हुसैन ने जब से इस दुनिया में आया कोई रात बगैर इबादत के नहीं गुजारी, तो ये आज आखिरी रात भी इबादत खुदा में गुजारना चाहता, अब आके मुसल्ले पे बैठ गए और इबादत खुदा में लगे हैं। एक वो मंजिल आती है इबादत में कि आदमी इतना महब और गर्क हो जाता कि आंखें बंद हो जाती हैं, पूरी तवज्जो अल्लाह की जानिब के हुसैन को लगा कोई मेरे पहलू में आके बैठा, आंखें खोल के देख क्या देखा कि मेरा 14 साल का 15 साल का यतीम भतीजा हुसैन, इसके चचा भी हैं, हुसैन इसके खालू भी, मेरा यतीम भतीजा 14-15 साल का कासिम मेरे पहलू में आके बैठा। हुसैन ने कहा कासिम बेटा ये वक्त यहां आने का नहीं है, तेरी मां खेमे में अकेले रह गई होगी, आज भी करबला मौला में उम्मे फरवा और जनाब कासिम का खेमा एक खुसूसी अहमियत के साथ अलग से बनाया गया। कहा कि यहां आ गया है तेरी मां अकेली रह गई होगी, रात का वक्त है, करबला का जंगल है, कहीं घबराए नहीं, जाके मां के पास बैठ। और कासिम ने तड़प के कहा कि चचा मैं तो आया भी मां के कहने पर हूं, खुद से नहीं आया हूं, मेरी मां ने मुझे भेजा। हुसैन ने कहा लेकिन क्यों? कहा अभी मैं अपनी मां के पास था। आप में से जितने लोग करबला की ज़ियारत करके आ चुके हैं अपने जहनों में वो खेमा लेकर आइए जो खेमागाह के आखिर में सीधे हाथ पर है। कहा कि मैं अपनी मां के पास बैठा था, एक बार मेरी मां उम्मे फरवा ने मुझे देखा और कहा कासिम बेटा मैं सैदानी नहीं, मैं गैर खानदान से आई हूं और मुझे तेरे बारे में बड़ी परेशानी है, तुझे मैंने दूध पिलाया है कल करबला के मैदान में, तू बहुत कमसिन, ऐसा ना हो कि जिहाद में तेरे कदम पीछे हट जा तो दुनिया ये कहे कि हसन का बेटा तो कभी बुजदिली ना दिखाता, ये उम्मे फरवा के दूध की खराबी। बेटा सिर्फ आका से जाके इतना पूछ ले और कुछ नहीं, सिर्फ इतना पूछ ले कि कल के मरने वालों में मेरा नाम है कि नहीं। एक फूल को बिखरते देखा तो उम्मे फरवा की नींद उड़ गई, पूरा दिन परेशान है और आज शबे आशूर कह रही है कासिम बस इतना पूछ ले कल के मरने वालों में मेरा नाम है कि नहीं है। चचा मैं तो अम्मा के हुक्म पे आया हूं, मुझे इस सवाल का जवाब दे दी। हुसैन ने कोई जवाब नहीं दी, कासिम को सीने से लगा लिया, पेशानी पे बोसा दिया, कासिम का बदन सूंघने लगे। बेटा कासिम तुझमें से मुझे भैया हसन की खुशबू आ रही है, काश मेरा भाई आज करबला में मेरे साथ होता तो वो देखता कि उसका हुसैन किस तरह से दुश्मनों के दरमियान गिर गया। लेकिन कासिम ने दोबारा सवाल दोहराया, चचा मुझे तो ये बता दीजिए कल मरने वालों में मेरा नाम है कि नहीं। हुसैन ने कहा कासिम मौत 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 की बात कर रहा, पता भी है कि मौत किसे कहते, कैफ इंद कल मौत, तू मौत को कैसा पाता, बे इख्तियार का आला मिनल असल, चचा शहद से ज्यादा खुशगवार शीरीन और मीठी चीज है मौत, मैं तो मौत के लिए तड़प रहा हूं लेकिन आपने बताया नहीं मेरा नाम है कि नहीं। हुसैन ने फिर भी कोई जवाब ना दिया, बस एक बार कासिम की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि चचा ऐसा लगता है मेरा नाम कल मरने वालों में नहीं है, तभी तो आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। भाई इतना सुनना था हुसैन ने कहा कासिम तू अपने नाम के बारे में पूछ रहा, अरे कल के मरने वालों में तो तेरे भाई अली असगर का नाम भी शामिल है। इतना सुनना था एक बार कासिम जोश में खड़े हुए और ऐसी अंगड़ाई ली कि कबा के बंद बंदे कबा टूटने लगे। चचा ये बेहया फौज हमारे खेमों तक आ जाएगी कि गहवारे में असगर को शहीद किया जाएगा। हुसैन कैसे बताए कासिम बेटा तेरा अजगर गहवारे में नहीं मारा जाएगा, वो तेरे चचा के हाथ में होगा जब तीन भाल का तीर लगेगा। हुसैन ने कहा जा कासिम माँ के पास बैठ, रात बहुत अंधेरी है और बहुत ही हौलनाक और वहशतनाक। कासिम चलेगा और फिर बात को मुख्तसर करता हूं। एक बार आशूर का वो वक्त आया कि बनी हाशिम के शहजादों की बारी आ गई, उम्मे फरवा के लिए कयामत का वक्त आ चुका। अब जो कासिम खेमे में आते हैं इंतहाई नाराजगी के साथ उम्मे फरवा ने मुंह फेर लिया। कासिम बेटा ये दिन आना था, मेरे आका का लाल अकबर मारा गया, अकबर का लाशा आ गया, मेरी शहजादी जैनब के ऑन मारे गए, मेरी शहजादी जैनब के मोहम्मद मारे गए और मेरा कासिम अब तक जिंदा बैठा। कासिम ने एक मरतबा हाथ जोड़े का अम्मा, हर मर्तबा सबसे पहले मैं दौड़ के चचा के पास जाता हूं, चचा मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। और चचा सिर्फ मुझे सीने से लिपटा के कहता है कासिम तू तो मेरे भाई हसन की निशानी है, तुझमें से मुझे भाई हसन की खुशबू आ रही, एक बार चचा से मरने की इजाजत दिलवा दे फिर देख तेरा कासिम कैसा जिहाद करता। उम्मे फरवा ने कहा कासिम मुझे याद है कि जब तेरे बाबा का आखिरी वक्त करीब आया था तो मुझे एक तावीज देकर कहा था, उम्मे फरवा ये तावीज कासिम के बाजू पे बांधना और जब मेरा कासिम किसी बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हो तो ये तावीज पढ़ लेना। बेटा आज से बड़ी परेशानी क्या होगी कि सब मारे जा रहे और तुझे मरने की इजाजत नहीं मिल रही। माँ ये नहीं कहती कि मेरा लाल कैसे बचे, माँ कह रही है मेरा लाल कैसे मरे। तावीज खोला गया, हसन मुश्तबा की वसीयत है कासिम के नाम, कासिम जब कल करबला में मेरा भाई हुसैन दुश्मनों के दरमियान घिर जाए तो कासिम लाल अपने बाप हसन की जानिब से अपनी जान हुसैन पे कुर्बान कर देना। बस एक बार मां और बेटे की खुशी। लेकिन वही बात जो मैंने पहले कही, खानदान अहले बैत में खुसूसन उम्मे फरवा इतनी शर्मीली और हया वाली थी कि आका हुसैन से कभी बात नहीं करती थी। कासिम को लिया, तावीज को लिया और एक बार शहजादी जैनब के खेमे में आ और कहा कि शहजादी ये कौन है, आज आपकी ये कनीज आपके दर पे सवाली बन के आई। अच्छा ये भी तारीख का जुमला कि जैनब कुबरा को बड़ी तमन्ना थी कि सारी अरब की औरतें मेरे पास हाजतें लेके आती हैं, जिंदगी में उम्मे फरवा ने कभी मुझसे कोई चीज नहीं मांगी। अक्सर कहा करती थी उम्मे फरवा सारे अरब की औरतें मेरे पास आती हैं और तूने कभी मुझसे कुछ ना मांगा। उम्मे फरवा कहती है शहजादी जो आपके घर में है उसको कोई जरूरत नहीं मांगने की। आज पहुंची और कहा शहजादी आपकी ये कनीज आपके दरवाजे पे आई और आज मैं सवाली बन के आई, आज मैं हाजत बन के आई, हाजतमंद बन के आई। शहजादी आज मेरा एक सवाल है जो आपको पूरा करना होगा, वादा करें। जैनब तो कब से इंतजार कर रही थी उस दिन का कि उम्मे फरवा मुझसे कुछ मांगे। खुशी के आलम में कहने लगी फरवा मैं तो तड़प रही थी, बता तुझे क्या चाहिए। एक बार कासिम को आगे किया और कहा शहजादी मेरे कासिम को मरने की इजाजत दिलवा दी। जैनब ने सर से पैर तक फरवा को देखा, फरवा मांगा भी तो क्या मांगा, सवाल भी किया तो क्या सवाल किया। उम्मे फरवा ने तावीज बढ़ाया का शहजादी और ये वसीयत भी देख लीजिए। एक बार जैनब हुसैन के पास आई और कहा भैया आज जैनब एक सिफारिश लेके आई है, मेरा कासिम मख्तल में जाना चाहता, मेरे कासिम को मख्तल में जाने की इजाजत दिलवा दे। हुसैन ने कहा जैनब तुम कह रही हो, भैया हसन क्या भूल गई, हसन का लाल है, हसन की निशानी है। जैनब ने कहा भैया वो सब अपनी जगह, लेकिन उम्मे फरवा वादा ले चुकी है, पहले उम्मे फरवा ने वादा लिया फिर अपनी हाजत पेश की। कासिम एक बार हुसैन ने कहा जा कासिम बेटा भाई की वसीयत भी आ गई है, बहन जैनब की ख्वाहिश भी आ गई है, मैंने तुझे इजाजत दी। तारीख का फकरा है कि इतना कमसिन था करबला का ये मुजाहिद कि अब्बास ने गोद में लेके घोड़े पे बिठाया, लेकिन जब चलने लगे तो उम्मे फरवा ने زینب کبرا کی سنت پہ عمل کیا اور ایک بار چادر میں سے ایک امامہ نکالا اور کہا شہزادی یہ آپ کے بھائی اور میرے آقا حسن مصطفیٰ کا امامہ ہے، میرا قاسم بہت چھوٹا ہے لیکن دل چاہتا ہے یہ شبیہ حسن مصطفیٰ بن کے آج میدان میں جائے، آقا حسین سے کہیے اپنے ہاتھوں سے میرے قاسم کو ان کے بابا کا امامہ پہنائے۔ ایک بار حسن کی شبیہ بنا، قاسم میدان میں گیا، قاسم کا جہاد کربلا میں بہت خاص جہاد، ازرق شامی کے ساتھ بیٹے، جوان بیٹے، اور وہ قاسم جیسے بچے کے ہاتھ سے مارے گئے۔ خود ازرق شامی جب قاسم کے مقابلے پہ آیا اور گھیرے میں آ گیا، اس نے ایک بار آواز دی، اے فوج شام ذرا میری مدد کو آؤ، 30,000 کا نرغیام، 30,000، 30,000، اور 13 برس کا قاسم ایک بار غلبہ کر کے آئے اور اس تیزی سے حملہ کیا، قاسم زمین کربلا پہ گرے، آواز دی، چچا میرا آخری سلام لو، یہ تاریخ کا مانا ہوا فقرہ، حسین کربلا کے کسی مجاہد کی آواز پر اتنی تیزی سے نہیں دوڑ کے آئے تھے، اکبر کے قریب بھی اس طرح نہیں گئے، عباس کے قریب بھی اس طرح نہیں گئے، آن اور محمد کے قریب بھی اس طرح نہ گئے کہ جتنا قاسم کے قریب گئے، اتنا تیزی سے دوڑ کے آئے کہ فوج یزید تو سوچ بھی نہیں سکتی، حسین کو دیکھا گھبرا کے بھاگے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے، اتنے جلدی حسین پہنچے، مگر یہ گھوڑے جو دوڑ رہے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے درمیان 14 برس کا ایک گلبدن زمین کربلا پہ پڑا ہے۔ ایک جملہ امام زمانہ سے منسوب ہے، سلام کرتے میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف چلی گئیں، بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئیں، اور حسین نے قاسم کے سرحانے پہنچ کے کہا، قاسم تیرے چچا کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تو نے پکارا اور میں وقت پہ تیرے سرحانے نہ آیا۔ اور ایک بار قاسم نے آنکھیں کھولی، چچا کو دیکھا اور کہا، بابا میرا سلام لو، بابا میرا سلام لو۔ عجیب عجیب جملہ آ گیا تاریخ میں، ارے قاسم کیا وقت ہے آخر، ہوش و حواس نہ رہے کہ چچا کھڑے ہیں اور کہتے بابا میرا سلام لو۔ نہیں، علماء لکھتے وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ قاسم نے آخری بار حسین کو پکارا تھا نا، حسین خیمے سے آئے، جنت البقیع سے حسن مصطفیٰ دوڑ کے آ رہے ہیں، قاسم بیٹا میرے لال گھبرانا نہیں، تیرا باپ تجھے اپنے ساتھ لے جانے آ رہا۔ دونوں بھائی ایک ساتھ پہنچے، اللہ شاہ ایسا نہ تھا کہ اٹھایا جاتا، باغ جنت کا پھول بکھر کے رہ گیا، حسین نے آبا کندھے سے اتاری، زمین کربلا پہ آبا بچھائی، قاسم کا جسم جمع کیا اور ایک بار یہ گٹھری بنا کے خیموں کی جانب چل رہے ہیں۔ حسین خیمے کے قریب پہنچے، اب تک طریقہ یہ کہ حسین لاشا لاتے ہیں خیمے میں داخل ہوتے ہیں، آج حسین خیمے کے دروازے پہ رک گئے، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، کہا خاصی دیر ہو گئی، زینب گھبرا کے باہر آئی، دیکھا حسین کے ہاتھ میں کوئی لاشا نہیں ہے، تڑپ کے کہا بھیا ایک تو اتنی دیر اور پھر میرا قاسم کہاں ہے، تیرے دونوں ہاتھوں میں کوئی لاشا نہیں ہے۔ حسین نے کہا کہ یہ گٹھری دیکھ رہی ہے نا، اس میں تیرا قاسم، اس میں میرا قاسم، اس میں بھیا حسن کا قاسم ہے، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہیں، اور دیکھو ذرا آہستہ بولو کہیں ام فروا نہ سن لے، کوئی ماں اپنے بیٹے کی حالت نہیں دیکھ سکتی۔ اور ام فروا تو زینب کے پیچھے پیچھے آ رہی، ایک مرتبہ آقا حسین کی بات سنی، زندگی میں پہلی اور آخری بار حسین سے بات کی اور کہا کہ مولا ایسی کیا بات ہے، ذرا مجھے دکھائیے تو میرا لال کس حالت میں ہے۔ اور ام فروا کے کہنے پہ حسین نے گٹھری کھولی، ماں کے سامنے بدن کے ٹکڑے نظر آئے، ایک جملہ کہا اور مسائل ختم ہو گئے، اس کے بعد آپ دعا کا انتظار نہیں کریں گے، تابوت کے لیے کھڑے ہوں گے، ایک جملہ جیسے ہی گٹھری کھلی قاسم کا بدن ٹکڑے نظر آئے. عجیب جملہ کا ام فرمان کہا شہزادی زینب، شہزادی کلثوم، شہزادی کبرا، ارے رباب، ارے رقیہ، سب آ کے مجھے مبارکباد دو. میری کامیاب، میری قربانی تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ کامیاب ہوئی ہے. آئے میرا قاسم، واہ قاسمہ، واہ قاسمہ، واہ قاسمہ.